तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया कि जीव की जो विषम स्थिति है इस भौतिक जगत में आने के बाद कैसे अलग अलग प्रकार के कष्टों से उसको गुजरना पड़ता है, कैसे ये वास्तव में भौतिक जगत एक भ्रम है, इल्यूजन है, मतलब क्योंकि टेम्परेरी है हर चीज और हम इसके विपरीत में नित्य हैं, इसलिए जो हमें आनंद चाहिए नित्य आनंद वो इस भौतिक जगत में संभव नहीं है। शास्त्रों में इसकी एक और तरीके से भी तुलना दी है, जैसे मृग तृष्णा होती है मिराज, तो जो हिरण है वो पानी सोच करके उसके पीछे भागता है, दूर से रेगिस्तान में ऐसा लगता है ऐसे पानी है, लेकिन जब वहां पहुंचता है तो लगता है पानी यहाँ नहीं है और थोड़ा दूर है, फिर थोड़ा और दूर भागता है, ऐसे भागता रहता है उसके पीछे पीछे पीछे, कभी हासिल नहीं होता, भागते भागते मर जाता है। तो शास्त्रों में इस प्रकार से उपमा दी है कि भौतिक जगत में आनंद की खोज ऐसी है कि हम जो है ऐसी जगह आनंद खोजने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ आनंद नहीं है, जहाँ केवल आनंद का भ्रम है, भौतिक विषयों में आत्मा का आनंद वहां नहीं है। आनंद है जरूर, पानी का भ्रम होता है हिरण को तो पानी का अस्तित्व तो है, पर रेगिस्तान में नहीं है, तालाब में है, वहां जाके उसको ढूंढना चाहिए था। तो उसी प्रकार से आनंद की हमारी खोज तो सही है, वो है, एग्जिस्ट करता है नित्य आनंद, पर यहां इस भौतिक जगत में, भौतिक तत्वों में, भौतिक पदार्थों में, भौतिक भोग में नहीं है, वो भगवान की सेवा में है। तो ये इस तरह से हमने देखा, और हमने ये भी देखा कि कैसे हम जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण कर रहे हैं और किस आधार पर कर रहे हैं। तो वो हमने देखा कि जो हमारी चेतना है पूरा जीवन भर जो इंप्रेशंस उसमें पड़ते हैं उसके आधार पर लास्ट मोमेंट पर जो सम टोटल उसका बैठता है उसके आधार पर हमको एक शरीर परमात्मा देते हैं जो सुटेबल होता है हमारी इच्छाओं और कर्मों के अनुसार, जो भी हमारी इच्छाएं शेष रह गई हैं और हमारे कर्म के अनुसार उसको पूरा करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप की बॉडी हमको दे दी जाती है। तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं कि मनुष्य के लिए या जीव के लिए परम सिद्धि क्या है और वहां तक पहुंचने के लिए क्या मार्ग है। तो आज की और कल की क्लास में मिला करके हम ये टॉपिक के ऊपर धीरे धीरे डिटेल लेंगे। तो सबसे पहले तो इस पर चर्चा करें कि परम सिद्धि क्या है, हाईएस्ट परफेक्शन, क्योंकि हर एक आदमी चाहता है कि वो हाईएस्ट पॉइंट पर जाए, ही वॉन्ट्स परफेक्शन इज लाइफ, ही वॉन्ट्स टू मेक इज लाइफ परफेक्ट। तो इसलिए पहले ये थोड़ा चर्चा करेंगे कि शास्त्र के अनुसार हाईएस्ट परफेक्शन क्या है, परम सिद्धि क्या है। तो भगवद गीता में एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अव्यक्तम अक्षर इति उक्तः तम आहुः परमां गति यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जिस स्थान को अव्यक्त कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है, तम आहु परमां गति, और जिसे परम गति कहा जाता है, परम सिद्धि की स्थिति कहा जाता है, परम गति कहा जाता है, सुप्रीम डेस्टिनेशन, यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जहां पहुंचने के बाद दोबारे से इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता, तद धाम परमम मम, वो परम धाम मेरा है। अव्यक्त क्यों कहा? क्योंकि वो हमारी इन भौतिक इंद्रियों से दृष्टिगोचर नहीं होता है, इसलिए वो अव्यक्त रहता है हमारे लिए। और अक्षर क्यों कहा? शर कहते हैं फैलिबल, जो पतन जिसका हो सकता है, जो भौतिक से प्रभावित हो सकता है, उसे क्षर कहते हैं, और अक्षर कहते हैं जो कभी भौतिक कलमश में ना आए, भौतिक प्रभाव में ना आए। तो जो अक्षर धाम है यानी ऐसा धाम जो भौतिक के परे है, भौतिक संसार के परे है, जो कभी भौतिक प्रभाव में नहीं आता और जो अव्यक्त है, हमारे लिए अव्यक्त रहता है, उसे परमान गति कहते हैं, और जहां पहुंचने के बाद दोबारा नहीं आना पड़ता वह है मेरा धाम। तो भगवान कृष्ण का जो अबोड है, जैसे हमने वो चार्ट में भी देखा, सुप्रीम अबोड गोलोक, वो परम धाम भगवान बता रहे हैं। अनेक अनेक श्लोक में बता रहे हैं, और न केवल भगवत गीता में बल्कि पूरे शास्त्र में जगह जगह इसके प्रमाण अनेक अनेक जगह पर हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक धाम में रहते हैं वो परम धाम है। जैसे कि हम पहली क्लास में देखा, अर्जुन भी बोलते हैं परम धाम परम पवित्र, आप परम पवित्र हैं और आपका धाम पवित्र है, परम है, सुप्रीम अबोर्ड है आपका। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि असित देवल व्यास नारद सभी ऋषि मुनि स्वीकार करते हैं। फिर एक और श्लोक में भगवद गीता में कहा गया है, न तद भासते सूर्य न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। जहां कोई सूरज नहीं है, सूरज की आवश्यकता नहीं है, कोई चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, न इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, जहां जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता, ऐसा धाम है मेरा धाम। तो यानी कि ये बात हो रही है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हाईएस्ट पॉइंट की, गोलोक धाम की। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और वो सभी इटर्नल हैं। तो स्पिरिचुअल प्लैनेट में जो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जितने प्लैनेट्स हैं वो सब इटर्नल हैं, नित्य हैं सभी, और उनमें जो शिरोमणि है वो है गोलोक धाम। तो वो भगवान जहां पर्सनली रहते हैं कृष्ण के रूप में, श्याम सुंदर के रूप में जहां रहते हैं उसे गोलोक कहते हैं। फिर उन्हीं के विस्तार, जैसे हमने उस चार्ट में देखा, द्वारका के अंदर वासुदेव, वही कृष्ण एक फर्दर एक्सपेंशन वासुदेव के रूप में रहते हैं। फिर मथुरा, द्वारका, अयोध्या में श्री राम के रूप में रहते हैं। ये एक ही के अलग अलग रूप हैं, जो जितने विष्णु तत्व हैं, नृसिंगा रूप, वामन, विष्णु, तो कैसे है अलग अलग रूप, किस तरह से हैं अलग अलग, एक ही व्यक्ति अलग अलग रूप में कैसे है। जैसे हम देखें, एक है ऑफिस में, एक ऑफिसर ऑफिस में जाते हैं, वहां पर उनका मूड अलग रहता है, वहां पर ही इज लाइक एन ऑफिसर, उनकी जो डीलिंग रहती है एम्प्लॉयज के साथ, किसी के भी साथ, वो इट्स लाइक एन ऑफिसर, वो सब रिस्पेक्ट देते हैं और उसी तरह से डीलिंग होता है। वही व्यक्ति जब घर में आते हैं अपने बच्चों के साथ, तब फिर वो ऑफिसर की तरह नहीं रहते हैं, फिर वो बच्चों के साथ खेलते हैं, बच्चे उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, उनको घोड़ा बना देते हैं, वहां वातावरण जो है वो अलग है, वही व्यक्ति है लेकिन वातावरण अलग है, वहां मधुर वातावरण है और वहां ऑफिस का काम है, वहां एक अलग उत्तरदायित्व का काम है और यहां फंक्शन अलग है, एक ही व्यक्ति। तो उसी प्रकार से अलग अलग विष्णु तत्व, एक ही व्यक्ति अलग अलग मूड में है, अपनी अलग अलग शक्तियों को प्रकट कर रहे हैं। संपूर्ण रूप से जो संपूर्ण शक्तियां प्रकट हैं, जो नेचुरल उनका पोजीशन है, नेचुरल उनका जो मूड है, वो है गोलोक धाम में, जहां भगवान एक ग्वाले की तरह से गाय चराते हैं और वृंदावन में एक गांव का जीवन, वो उनको सबसे प्रिय है, ओरिजिनल सबसे प्रिय नेचुरल जो है वो है। अभी उसके बाद जब द्वारका आते हैं तो द्वारकाधीश की तरह आते हैं, वहां फिर राजा की तरह आते हैं द्वारकाधीश में या मथुरा में, और फिर अयोध्या में जाते हैं तो वहां पर श्री राम वो भी राजा की तरह से आते हैं, और विष्णु में तो और अधिक ऐश्वर्यपूर्ण है उनका। तो वही एक ही व्यक्ति, एक ही भगवान, लेकिन अलग अलग रूप में आते हैं। तो जैसा हमने देखा कि भगवान के साथ अलग अलग रस में भक्त भगवान की सेवा करते हैं, रिलेशन में जो विशेष रूप से पांच प्रकार के बताए गए हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो उसमें से जो शांत रस है, उसमें जो पेड़ पौधे हैं आध्यात्मिक जगत में, वो इस रस में आते हैं, शांत रस में, या जो जानवर हैं, गैयाएं हैं, वो शांत रस में आते हैं। उनका पर्सनल एक्टिव रिलेशन नहीं होता, लेकिन वो अप्रिशिएट करते हैं कि भगवान है, इसे न्यूट्रल रिलेशन कहते हैं, न्यूट्रल। उसके आगे जाते हैं दास्य भाव, जहां पर कि भक्त एक दास के रूप में भगवान की सेवा करता है। इसके उदाहरण हैं हनुमान जी अयोध्या में, हमेशा से दास के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। उसी प्रकार से गोलोक धाम में भी भगवान के बहुत सारे भक्त हैं जो दास रूप में भगवान की सेवा करते हैं। फिर मैत्रेय, जो मित्रता का भाव है, उसमें अर्जुन आते हैं और अनेक अनेक सखा आते हैं। उसके बाद फिर वात्सल्य में नंद बाबा, यशोदा आते हैं, और फिर माधुर्य में अलग अलग भगवान की रानी आती हैं, रुक्मणी इत्यादि और श्रीमती राधा रानी इत्यादि। तो जो वृंदावन धाम है, वहां ये सभी रस पूरी मात्रा मिलते हैं, सब प्रकार के भक्त हैं वहां। जो वैकुंठ है, यानी कि जो विष्णु रूप में जो भगवान का है, वहां पर दास्य भाव है और बहुत हद थोड़ा हद तक मैत्री का भाव है, वात्सल्य और माधुर्य वहां नहीं है। वहां भगवान का दूर से आदर के साथ स्तुति करके प्रणाम करके इस प्रकार से उनकी सेवा होती है, उनसे कोली भर के उनके साथ खेल करके पिकनिक मना करके, ऐसे वहां पर ये भाव में नहीं सेवा होती है। तो इस प्रकार से जो माधुर्य पूर्ण है, पूर्ण रूप से जो भगवान का जो रूप है, संपूर्ण माधुर्य लिए हुए है, वो है भगवान श्री कृष्ण का रूप। तो यहां उसकी बात हो रही है कि वो जो विशेष रूप से वो भगवान अपने उस धाम की बात कर रहे हैं जो कृष्ण स्वयं बुला रहे हैं हमको, लेकिन वो सभी के बारे में, वहां सूरज नहीं है, वो सब इक्वली पूरे वैकुंठ जगत के बारे में बात है, कहीं भी हो न तद भास्यते, जहां जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता, वो सभी कोई भी वैकुंठ जगत में, कोई भी वैकुंठ प्लेनेट में जाने के बाद वहां से वापस नहीं आना पड़ता। परस्तस्मात् तु भाव अन्यत् व्यक्त अव्यक्त व्यक्तात् सनातन, इस भौतिक जगत से परे परस्तस्मात् तु भाव, एक और अन्य सृष्टि है, एक और अन्य एग्जिस्टेंस है जो अव्यक्त और इससे सबसे अलग है, भगवान बताते हैं। सो विशेष जानने योग्य बात यहां यह है कि भगवान का धाम ऐसा है जहां जाने के बाद भगवान गारंटी देते हैं दोबारे वापस नहीं आना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिन अर्जुना मानुपेत्यतु कौन्तेया पुनर्जन्म न विद्यते। इस पूरे ब्रह्मांड में आ ब्रह्म भुवनान लोका, 14 लोक हैं, इसमें भ्रमण करते करते पूरा जो ये जो 14 लोक हैं, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिन अर्जुना, हर जगह पुनरावृत्ति होती है, हर जगह जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है, चाहे ब्रह्मा जी हो जो सबसे ऊपर के ग्रह में है भौतिक जगत में, उनका भी जन्म मृत्यु होता है, हमने डिस्कस किया, बहुत लंबी आयु होती है लेकिन उनका भी होता है, पाताल लोक तक सबका, कोई भी इससे छूता नहीं है, कोई भी देवी देवता भी इससे छूते नहीं है, जिनके धाम हमने देखा उस पोस्टर के अंदर, वो भी इसी भौतिक जगत के अंतर्गत आते हैं, वो सब भी पुनरावर्तन, जैसे प्रलय होता है, ब्रह्मा जी की आयु खत्म होती है, सब कुछ खत्म होकर के महाविष्णु के शरीर में चला जाता है, और फिर जब दोबारे से सृजन होता है तो दोबारे से वो प्रकट होता है, फिर दोबारे भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ऐसे बार बार प्रकट होता है, बार बार क्षय होता है, हर बार प्रकट होने पर महाविष्णु के शरीर में जो सब चले गए थे पुनः उनको जिस स्थान पर उन्होंने छोड़ा था, जिस चेतना के स्थान पर छोड़ा था, उसी स्थान से वो अपना जीवन प्रारंभ करते हैं, अपनी यात्रा आगे प्रारंभ करते हैं। तो वो केवल भक्त, वो केवल इस भौतिक पूरे भौतिक प्रपंच में से केवल वो आत्माएं जो भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेते हैं वो भगवत धाम जा पाते हैं, नहीं तो सबको बाकी बार बार इस प्रलय में बार बार विनाश होना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, फिर विनाश लेना पड़ता है, ऐसा होता रहता है। तो ये तो है परम धाम। अभी जो निम्न लोक हैं, जैसे हमने बोला देवताओं के लोक, तो कई बार एक संशय ऐसा होता है, कई लोग ऐसे एक धारणा रखते हैं कि आप किसी की भी पूजा कीजिए अंत में तो गति एक ही होगी, सभी रास्ते एक ही जगह आके मिल जाते हैं, ऐसी कई बार उपमा दी जाती है कि आप कोई भी रास्ता पकड़ लो, किसी की पूजा कर लो और अंत में तो एक ही जगह सब पहुंच जाने हैं। लेकिन हम देखें तो भगवत गीता के अनुसार और शास्त्र के अनुसार ये बात सही नहीं है, ये बात जो है शास्त्र के अनुसार अनुमोदित नहीं है कि आप कोई भी रास्ता पकड़ लीजिए, वो जो है अपने आप बस किसी की पूजा कीजिए ऑटोमेटिकली वो एक ही जगह पहुंच जाएगा। तो वो कैसे है, भगवान बताते हैं, यान्ति देववृतान देवान पितृन यान्ति पितृवतान भूतानि यान्ति भूतेज्या मद्याजिन अपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोकों में जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक में जाते हैं, जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं वो भूत प्रेत के लोकों में जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे लोक में आते हैं। तो भगवान स्पेसिफिकली कैटेगराइज कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आप किसी की पूजा कीजिए, किस कुछ भी कीजिए, गति एक ही मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि आप अलग अलग देवी देवता की पूजा करेंगे और उसमें यदि आप सिद्धि प्राप्त करेंगे तो आप उन देवताओं के लोकों तक जाएंगे। और अन्य जगह बताए हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यत्यंते कलेवरम तम तमे विपकौन्तेया सदा तद भाव भाविता। आप अंत समय में जो जिस भावना में शरीर त्यागेंगे उसी भावना के अनुसार आपको अगला शरीर मिलेगा। और उसी श्लोक में फिर आगे बता रहे हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम, जितने भी देवी देवताओं से जो मिलने वाले फल हैं वो अंतवत, उनका अंत होता है, अंतवत्तु फलम तेषाम। और यान्ति, जो देव लोग जो देवों को पूजा करते हैं वो देव लोकों में जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं मेरे पास आते हैं। यानी बार बार स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम किसी की पूजा करें ऐसा होगा। और देवलोकों में जाने के बाद क्या होता है वहां बता रहे हैं, शीने पुण्य मृत्यु लोकम विशंते, जैसे ही पुण्य खत्म हुआ जिसकी वजह से आप ऊपर गए थे, वापस मृत्यु जगत में आना पड़ता है। जैसे यहां से आप वीजा लेके गए, वीजा का टाइम खत्म हुआ, आपको वापस आना पड़ता है। तो स्वर्ग लोक की स्थिति ऐसी है। लेकिन इसके विपरीत जो वैकुंठ जगत है, आध्यात्मिक जगत, वहां पर यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, जहां जाने के बाद दोबारा नहीं आना पड़ता, ऐसी गति है। तो ये तो हमने निश्चित किया कि तो सुप्रीम डेस्टिनेशन हमारी, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, मनुष्य का, जीव का लक्ष्य क्या होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं अपनी स्वाभाविक स्थिति में पहुंचना, हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना, कष्टों से हमेशा हमेशा के लिए उसकी निवारण करना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का हमेशा हमेशा के लिए निवारण करना, यदि हम चाहते हैं तो फिर हमें आध्यात्मिक जगत में जाना पड़ेगा, भगवत धाम जाना पड़ेगा। वही एक रास्ता है, और अन्य कोई रास्ता नहीं है। तो अभी सेकेंड पॉइंट आता है, तो वहां पहुंचने का फिर क्वालिफिकेशन क्या है, कौन आदमी वहां एंटर करेगा, आध्यात्मिक जगत में कौन एंटर करेगा। तो भगवान बताते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम नात्यत्र संशयः। हे अर्जुन, अंत समय में जो मेरा स्मरण करते हुए देह त्यागेगा, माम एव केवल मेरा स्मरण करते हुए जो देह त्यागेगा वो मेरे धाम आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बिल्कुल गारंटी के साथ भगवान बता रहे हैं कि अंत समय में जो मेरा स्मरण करते हुए देह त्यागेगा वो मेरे धाम आएगा। क्योंकि भगवान बताएं कि जिसका जैसा स्मरण रहेगा वैसा ही शरीर मिलेगा, वैसा ही जगह जाएगा वो। तो यदि भगवान श्री कृष्ण का स्मरण रहेगा हमें अंत समय में, तो हम भगवत धाम जाएंगे। फिर भगवान अलग श्लोक में बताए हैं, दूसरे श्लोक में, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु ममे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें ये गुह्यतम ज्ञान बता रहा हूं। लास्ट में भगवदगीता के 18 चैप्टर में भगवान बिल्कुल लास्ट में बता रहे हैं, अर्जुन अभी तक मैंने तुम्हें गुह्य ज्ञान बताया, यानी ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म। उसके बाद दूसरा परमात्मा का ज्ञान बताया, अभी तुम मेरे प्रिय मित्र हो इसलिए मैं तुम्हें गुह्यतम ज्ञान बता रहा हूं, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, मोस्ट कॉन्फिडेंट। भगवदगीता का एसेंस सार, दो श्लोक। पहला श्लोक है, मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन, हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, माम नमस्कुरु, प्रणाम करो और मेरी पूजा अर्चना करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो भगवान गारंटी दे रहे हैं, मामे वैश्यसी सत्यम ते, आई प्रॉमिस, मामे वैश्यसी, यू विल कम टू मी, और मैं प्रॉमिस तुम्हें दे रहा हूं, तुम मेरे प्रिय हो इसे तुम्हें प्रॉमिस दे रहा हूं ये। तो भगवान जो है ये प्रॉमिस दे रहे हैं कि भगवत धाम जाने के लिए हमें भगवान का चिंतन और भक्त बनना पड़ेगा, तो ही हम भगवान के पास जा सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन है कि हमें भगवान से आसक्ति होनी पड़ेगी, क्योंकि भगवत धाम में सब भगवान की प्रेमवश भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो अभी हमारी भौतिक जगत में आसक्ति है, भौतिक चीजों के भोग में आसक्ति है, भौतिक व्यक्तियों में आसक्ति है, हमें अपनी इस आसक्ति को ट्रांसफर करना पड़ेगा भगवान श्री कृष्ण में। भगवान श्री कृष्ण से आसक्ति होगी तो भगवत धाम जा सकते हैं, और यदि भौतिक जगत की चीजों से आसक्ति रहेगी तो भौतिक जगत में आना पड़ेगा, और दोनों एक ही साथ नहीं हो सकते हैं। भौतिक आसक्ति बना के रखें और भगवान से आसक्ति, वो संभव नहीं है ना। भगवान जो है, माम एकम शरणम, एक अनन्यश्चिंतयन्तु माम, अन्य और कोई अनन्यश्चिंतयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते, एकत्वम, एक। क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग क्वालिटी के हैं। भगवान को जो प्रेम चाहिए वो हाई क्वालिटी का चाहिए। इस भौतिक जगत में यदि कोई हस्बैंड वाइफ है और किसी और के साथ कुछ प्रेम हो तो झगड़ा हो जाता है यहीं पर। भगवान तो उनको तो जरूरत भी नहीं है हमारी, ऑलरेडी कितने सारे ऐसे भक्त हैं जो पूरा प्राण दिए बैठे हैं उनको। तो भगवान तो एकमात्र पूर्ण शरणागति चाहते हैं, और यही जीव का स्वाभाविक गुण भी है कि एकमात्र भगवान की तरफ उनका आसक्ति हो, यही स्वाभाविक गुण है। तो इसलिए ये बहुत कठोर शब्द है, कठोर वच लगता है हमको भौतिक जगत में, क्योंकि हमारी सबकी तो आसक्ति भी बहुत सारी चीजों से, इसलिए हमें लगता है कि ये तो यार बड़ा कठिन है। तो वो भी आएंगे, वो भी आएंगे, कैसे उसमें आएंगे, कोई भी है, पर क्वालिफिकेशन यही है। चाहे कोई भी आपकी जिम्मेदारी है, चाहे आपकी किसी के प्रति आसक्ति है, पर क्वालिफिकेशन यही है। इसमें कोई कंसेशन नहीं है कि पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति होगी तो ही हम भगवत धाम जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। तो अभी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ये आता है, ठीक है, तो अभी तो है नहीं वो आसक्ति भगवान के प्रति, अभी तो हम यहां इस स्तर पे हैं कि हमें बहुत सारी भौतिक इच्छाएं भी हैं और हमारे भौतिक जिम्मेदारियां भी हैं और अनेक अनेक अनर्थ भरे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। तो यहां से लेकर के अब एट प्रेजेंट की स्टेज से वहां की स्टेज तक हम कैसे पहुंचे, अभी ये प्रोसेस आता है। तो इस बारे में मैं भगवद गीता में से दो तीन श्लोक पढ़ूंगा जिसमें ये पूरा प्रोसेस भगवान बता रहे हैं, तो हम थोड़ा सा सुनेंगे इसको क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। ये 12वां अध्याय है जिसका शीर्षक है डिवोशनल सर्विस। इसके अंतर्गत भगवान बता रहे हैं यस प्लीज हियर विद अटेंशन, जस्ट फिक्स योर माइंड अपॉन मी द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एंड एंगेज ऑल योर इंटेलिजेंस इन मी, दस यू विल लिव इन मी ऑलवेज विदाउट ए डाउट। पूरी तरह से अपने मन को मेरे में स्थिर करो, अपनी बुद्धि को पूरी तरह से मेरे में लगाओ, ऐसा करने पर निश्चित रूप से आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, इवन लिविंग इन दिस वर्ल्ड इटसेल्फ विल बी विद कृष्णा, और ये शरीर छोड़ने के बाद तो डेफिनेटली विल गो टू हिज अबोट। तो ये भगवान बता रहे हैं यहां पहुंचना पड़ेगा, विदाउट अनन्य चिंतन तुम आओ 24 आवर कंप्लीटली एंगेज एब्जॉर्ब्ड इन थॉट्स ऑफ कृष्णा, इन थॉट्स ऑफ प्लीजिंग कृष्णा यहां। लेकिन भगवान इसके आगे नेक्स्ट बता रहे हैं, माय डियर अर्जुना ओ विनर ऑफ वेल्थ, इफ यू कैनॉट फिक्स योर माइंड अपॉन मी विदाउट डिविएशन देन फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति योगा इन दिस वे डेवलप इट डिजायर टू अटेन मी। हम इसी स्तर पर नहीं है जो भगवान ने पहले बताया, तो भगवान नेक्स्ट लेवल बता रहे हैं, ठीक है, अगर आपका मन हमेशा मेरे में आप चिंतित केंद्रित करने में असमर्थ हैं तो फिर एक स्टेप नीचे आओ, क्या करो, भक्ति योग के नियमों का पालन करके धीरे धीरे इस परम स्तर पे पहुंचो। तो भक्ति योग के नवविधा भक्ति के द्वारा उसके जो एसेंस है वो बताया गया, नवविधा 9 टाइप्स, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, इस प्रकार से 9 नवविधा भक्ति के रूप में बताया गया है, जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं भक्ति, मेन रेगुलेटिव प्रिंसिपल जिनके द्वारा भगवान के प्रति ये जो आसक्ति है हमेशा चिंतन करना वो पॉसिबल है। देखिए भगवान का चिंतन हमेशा कब होगा, जब भगवान के प्रति आसक्ति हो जाएगी। इसका एक उदाहरण शास्त्रों में दिया गया है, भौतिक जगत से कंपेयर करके दिया है वो उदाहरण जिससे हमारी समझ में आ जाए। जैसे इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कोई यंग बॉय और यंग गर्ल है तो उनके बीच में प्रेम होता है तो वो कितने एक दूसरे के प्रति आसक्त होते हैं, हमेशा एक दूसरे के बारे में चिंतन करते रहते हैं स्वाभाविक रूप से। तो जब भगवान के साथ उस प्रकार का हमारा गहरा अटैचमेंट हो जाता है तब संभव है कि हम भगवान का सतत रूप से चिंतन कर सकें। तो इसलिए वो स्तर लाने के लिए भगवान बता रहे हैं कि भक्ति योग के जो अलग अलग नियम है, रेगुलेशंस हैं, उनको आप पालन करो और अंत में इस स्तर तक आओ। तो जो हमारे टेम्पल की जो लाइफ है विशेष रूप से जो हम लोग फॉलो करते हैं तो वो जनरली इस स्टेप पे आती है। यहां हमारा पूरा दिन हर कार्य डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण की सेवा से संबंधित होता है। हम सुबह उठते हैं 3:30 बजे, 4:30 बजे से मंगला आरती होती है, उसके बाद फिर हम जप करते हैं हरे कृष्ण, उसके बाद फिर श्रृंगार दर्शन होता है और फिर उसके बाद अलग अलग भक्तों की प्रचार की सेवाएं, कोई भगवान की आरती कर रहा है तो कोई भगवान का मंदिर साफ कर रहा है, ऐसे भगवान से केंद्र में रखकर की सब क्रियाएं डायरेक्टली रिलेटेड हैं जिससे कि हम साथ साथ प्रयास करते हैं धीरे धीरे साथ साथ भगवान का स्मरण हमको हर सेवा में होता रहे। तो वो इस स्टेज की यहां बात की जा रही है कि आप जो हैं इस तरह से अपने को नवविधा भक्ति के उसमें लगा करके इस स्टेज पर फाइनल स्टेज पर आए। लेकिन सब लोगों के लिए भी संभव नहीं है, जैसे आपने बोला हमारी जिम्मेदारियां हैं, अभी भौतिक जिम्मेदारियां हैं, तो हम तो आपकी तरह आप कह सकते हैं कि हम तो मंदिर में आकर के पूरे दिन नहीं रह सकते, सेवा नहीं कर सकते, हमारी अभी अपनी जिम्मेदारियां हैं, या किसी और कारणवश से अभी पूरी तरह से हम डायरेक्टली 100% केवल भगवान के ही डायरेक्ट कार्यों में, डायरेक्ट सेवा में नहीं लग पा रहे हैं क्योंकि हमारी जिम्मेदारियां हैं। तो फिर भगवान सबके लिए उपाय बता रहे हैं, सबके लिए। देखिए भगवान जो है सबके लिए दयालु है। शास्त्रों में पूरा विधान है हर व्यक्ति के लिए, जो जिस स्तर पर उसको उस स्तर से उठा करके धीरे 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 भगवत धाम ले आना, सबके लिए उपाय है। ऐसा नहीं कि भगवान किसी को डिस्कार्ड करते हैं, कोई जिस स्तर पर भी है उसके लिए भी एक स्टेप आगे जाने के लिए प्रोसेस है, फिर उसके लिए एक स्टेप आगे जाने के लिए, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम आ सकते हैं। फिर भगवान बता रहे हैं नेक्स्ट स्टेज में, इफ यू कैनॉट प्रैक्टिस द रेगुलेशन ऑफ भक्ति योगा देन जस्ट ट्राई टू वर्क फॉर मी, बिकॉज बाय वर्किंग फॉर मी यू विल कम टू द परफेक्ट स्टेज। ये स्टेज है जो हम सबके लिए इस स्तर पर लागू होगी। अगर आप ये पहली दो नहीं कर सकते तो क्या करो, मत कर्म कृत, वर्क फॉर मी, वर्क फॉर मी, मेरे लिए कार्य करो। तो उसका अर्थ क्या है, एट प्रेजेंट हम सबकी जिम्मेदारियां हैं और कुछ भौतिक इच्छाएं भी हैं, आसक्ति भी हैं, इसलिए हमको भगवान बता रहे हैं जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट है गिव टू मी, जो उसका रिजल्ट है वो मुझे दो। अगर आप रिजल्ट खुद अपने लिए भोग करेंगे तो बंधन का कारण होगा, हमने पहले देखा। अगर हम उसको भोग करते हैं अपने लिए तो बंधन का कारण बनता है, इसलिए भगवान कह रहे हैं उसे मेरी सेवा में लगाओ। उसे कहते हैं निष्काम कर्म योग, विदाउट एनी पर्सनल डिजायर हम केवल पूरा का पूरा फल भगवान की सेवा में लगाते हैं, उसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। पर फिर आप कहेंगे तो खाएंगे कैसे, घर का सब चलाना है, घर का जिम्मेदारी है, वो कैसे निभाएंगे, सब कुछ भगवान को दे देंगे तो फिर हम हमारा क्या होगा। नहीं घबराइए मत। तो उदाहरण इसमें दिया गया है, जैसे मैं वो परपट पढ़ूंगा अभी, जिसमें बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, मत कर्म कृत, मत कर्म कृत का मतलब क्या है। तो वी विल जस्ट रीड इट, इट्स वेरी नाइस श्लोक, 11th चैप्टर, टेक्स्ट नंबर 55, जिसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दिस इज द एसेंस ऑफ भगवद गीता, दिस श्लोक। यस, ये श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। कौन मेरे पास आएगा, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु, ये पांच कंडीशन बता रहे हैं, ही विल कम टू मी। तो माय डियर अर्जुन, ही हु एंगेजेस इन माय प्योर डिवोशनल सर्विस फ्री फ्रॉम द कंटेमिनेशन ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज एंड मेंटल स्पेकुलेशन, ही हु वर्क्स फॉर मी, हु मेक्स मी द सुप्रीम गोल ऑफ हिज लाइफ and who is friendly to every living being, he certainly comes to me. Anyone who wants to approach the supreme of all the personalities of Godhead on the Krishna Loka planet in the spiritual sky and be intimately connected with the supreme personality Krishna must take this formula. This is the formula. Very important shloka. As stated by supreme himself. Therefore, this verse is considered to be the essence of Bhagavad Gita. The Bhagavad Gita is a book directed to the conditioned souls who are engaged in the material world with the purpose of lording it over nature and who do not know of the real spiritual life. तो भौतिक जगत में वो आत्माएं हैं बद्ध, जो इस भौतिक जगत का भोग करने की इच्छा से यहां है, उनको अपना real spiritual life नहीं पता है। The Bhagavad Gita is meant to show how one can understand his spiritual existence and his eternal relation ship with the supreme spiritual personality and to teach one how to go back home, back to Godhead. Now here is the verse which clearly explains the process by which one can attain success in his spiritual activity, devotional service. As far as the work is concerned, one should transfer his energy entirely to Krishna conscious activities. As stated in the Bhakti Sama Sindhu, Anasaktasya Vishayan Yatharam Upayunjataha Nirbandha Krishna Sambandhe Yuktam Vairagyam Uchyate. ये हमारे गोस्वामी हैं, उन्होंने एक ये श्लोक लिखा है। No work should be done by any man except in relationship to Krishna. This is called Krishna Karma. हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिसका संबंध कृष्ण से ना हो, नहीं तो बंधन का कारण हो जाएगा। हर कार्य कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। One may be engaged in various activities, but one should not be attached to the result of his work. हम कार्य तो कोई भी कर सकते हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं वो हम निभा सकते हैं, लेकिन उनके फलों से आसक्त हमें नहीं होना चाहिए. द रिजल्ट शुड बी डन ओनली फॉर हिम, लॉर्ड कृष्णा. फॉर एग्जाम्पल, वन मे बी एंगेज इन बिजनेस, बट टू ट्रांसफॉर्म दैट एक्टिविटी इन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, वन हैज टू डू बिजनेस फॉर कृष्णा. इफ कृष्णा इज द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, देन कृष्णा शुड एंजॉय द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. If a businessman is in possession of thousands and thousands of dollars, if he has to offer all this to Krishna, he can do it. This is work for Krishna. कोई businessman है या कोई भी किसी भी व्यवसाय में है तो proprietor कौन है वास्तव में? हमने देखा पहले के ईश्वर कृष्ण है वास्तव में proprietor. तो जो proprietor होता है obviously profit का मालिक enjoy करने की जो हकदार है वो proprietor होता है. तो वास्तव में जो भी हमारे पास संपत्ति है उसका वास्तव में जो हकदार है एंजॉय करने का, वास्तव में जो है वो किसके प्रयोग के लिए होनी चाहिए? भगवान की सेवा के लिए होनी चाहिए. तो पहले तो ये एक थोड़ा कटु है समझना, इसको स्वीकार करना, लेकिन यही तथ्य है कि भगवान प्रोप्राइटर हैं. ये हमको विश्वास होना चाहिए कि हर चीज उन्हीं के एंजॉयमेंट के लिए है. This is work for Krishna. Instead of constructing a big building for his sense gratification, he can construct a nice temple for Krishna and he can install the deity of Krishna and arrange for the deity service as is outlined in the authorized books of devotional service. This is all Krishna karma. अपने ही केवल इंद्रिय भोग के लिए बहुत बड़ा महल की जगह भगवान का मंदिर बना सकता है वो. One should not be attached to the result of his work, but the result should be offered to Krishna and one should accept as prasadam the remnants of the offerings to Krishna. If one constructs a big building for Krishna and installs the deity of Krishna, one is not prohibited from living there, but it is understood that the proprietor of the building is Krishna. Now this is important point. पैसा है हमारे पास तो हम एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाए. क्या बनाए बिल्डिंग? समझ करके कि इस बिल्डिंग के मालिक भगवान है, उसमें भगवान का मंदिर स्थापित करें. उसमें हम भी रह सकते हैं एज ए सर्वेंट ऑफ कृष्णा. ऐसा नहीं कि वी कैनॉट लिव एज ए सर्वेंट, वी ऑल्सो विल लिव उनकी सेवा करने के लिए. यानी कि पहले हमने हर चीज भगवान को ऑफर किया एंड प्रसाद रूप में फिर हमने आवश्यकता अनुसार ग्रहण किया. दिस इज द प्रिंसिपल. जैसे हम भोग यहां क्यों लगाते हैं, क्या सिद्धांत है? यह हर चीज भगवान की है, उन्हीं के द्वारा दी गई है, इसके प्रोप्राइटर वो है. इसलिए हम सबसे पहले हर चीज भगवान को देते हैं और फिर प्रसाद रूप में आवश्यकता अनुसार ग्रहण करते हैं. तो इसलिए ऐसा नहीं कि हमारे लिए क्या होगा. यस, प्रसाद रूप में हमको ग्रहण करना है. जानते हुए कि रियल प्रोप्राइटर तो कृष्ण है, सब कुछ उनके अर्पित कीजिए और फिर आवश्यकता जितनी हमें है शरीर की देखभाल के लिए, अपने परिवारजनों की शरीर की देखभाल के लिए, हम प्रसाद रूप में उसे ग्रहण करें तो हमारा निर्वाह तो हो गई ऑटोमेटिकली. और साथ साथ हम ये कृष्ण कर्म कर रहे हैं जिससे कि हम भौतिक जगत में बंधन में नहीं आएंगे. इसे कहते हैं कृष्ण कर्म. किसी के पास पूंजी नहीं है, धन संपत्ति नहीं है तो ऐसा नहीं कि वो भगवान का भक्त नहीं बन सकता, वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता. भगवान बताते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्यति. अगर कोई केवल एक फूल, तुलसी, जल मुझे अर्पित करता है प्रेम भाव से, भक्ति भाव से, मैं उसको स्वीकार करता हूं. तो अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो कम से कम जल, तुलसी, या तो गरीब से गरीब आदमी भी ऑफर कर सकता है. तो भगवान यदि वो भक्ति भाव से कर रहा है तो भगवान उसे उसी अनुपात में ग्रहण करेंगे जितने अनुपात में उन्होंने वो बड़ा महल जिसने भगवान को समर्पित किया है उसी अनुपात में वो उसकी सेवा ग्रहण करेंगे. भगवान को तो वास्तव में ना आवश्यकता है उस बड़े महल की और ना ही आवश्यकता है वो जल इत्यादि की, वो अपने आप में पूर्ण है. लेकिन भगवान को क्या चाहिए? उस मटेरियल जो हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं उसके साथ की हमारी भक्ति भावना, भगवान को वो चाहिए, फीलिंग्स, इमोशन, अवर भावना. पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम बोले भाई हमारे भगवान को भावना ही चाहिए तो हम भगवान को केवल एक पानी और रोज तुलसी लगाएं और खुद खाने के लिए पनीर और बढ़िया बढ़िया खाएं और भगवान को लगाने के लिए भावना रूप में केवल पानी और तुलसी दें, क्योंकि वो एग्जैक्टली हमारी भावना ही नहीं हुई. फिर इसका मतलब हमारी भावना ही नहीं है. भावना होती तो अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप पत्र पुष्प देंगे तो भी सही है, लेकिन अगर आपके पास करोड़ रुपए है तो आप करोड़ रुपए दीजिए, आप बड़ा काम कीजिए, वो आपकी दर्शाता है भावना, नहीं तो चीटिंग। और भगवान को कौन चीट कर सकता है? भगवान बताते हैं भगवद गीता में, आई एम द चीट ऑफ द चीटर्स। जो लोग चीट करते हैं, आई एम द हेड ऑफ देम, उनका मास्टर हूं मैं। तो भगवान तो हमारे हृदय के बिल्कुल गुह्य स्थान में बैठे हैं, जो हम भी नहीं जान सकते हमारे बारे में, वो भगवान हमारे बारे में जानते हैं। जैसे हम कोई इच्छा करते हैं, कोई विचार करते हैं, हमसे पहले भगवान जान लेते हैं कि क्या इसके चल रहा है अंदर। तो हम भगवान को चीट नहीं कर सकते हैं। ये भक्ति में बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, निष्कपटता, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कृष्ण कर्म क्या है? हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसे भगवान की सेवा में लगाएं। यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तुम जो भी कार्य करो, तुम जो भी खाओ, तुम जो भी तपस्या करो, तुम जो भी दान करो, वो मुझे अर्पित करो। तो हम भगवान की सेवा किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जो भी हमारे पास अवेलेबल है, जो भी भगवान की कृपा से हमारे पास है। किसी के पास पैसा है तो पैसे को भगवान की सेवा में लगाए, किसी के पास बुद्धि है तो उस बुद्धि का उपयोग भगवान की सेवा में करें, किसी के पास कोई आर्ट है, कोई सिविल इंजीनियर है मान लीजिए, सो ही कैन हेल्प इन कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स। कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, वो भगवान की सेवा लग सकता है। भगवान की सेवा के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, कंप्यूटर तो मॉडर्न है वो भगवान की सेवा नहीं लग सकता, चाहे मॉडर्न है चाहे ओल्ड है तो भगवान का ही। इसलिए ये माइक है, ये मॉडर्न है, बट वी आर नाउ यूजिंग इट इन फॉर सर्विस ऑफ कृष्णा, क्योंकि ये भी भगवान की संपत्ति है। तो अभी हमको क्या करना है, सोचना है कि मेरे पास अभी तक जो कुछ भी है भगवान की कृपा से, शक्ति है, पैसा है, स्टेटस है, नॉलेज है, बुद्धि है, कोई भी आर्ट है, हाउ टू यूज इट इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, इससे भी मैं भगवान की सेवा कैसे करूं। अभी तक हम उन सब चीजों को अपने इंद्रियों के भोग के लिए यूज करते आए हैं, या अपने परिवारजनों के इंद्रियों के भोग के लिए यूज करते आए हैं। अभी वही एक्टिविटी वही रहेगी, पर अभी उसका केंद्र, बेनिफिशियर, जो बेनिफिशियरी है उसका, वो बदल जाएगा। अभी वो कृष्ण केंद्र हो जाएंगे, एक्टिविटी वही रहेंगे, आपके परिवार का पालन पोषण भी होगा, पर कृष्ण को केंद्र रख करके। ये है कृष्ण कर्म। अर्जुन भी परिवार, उनका भी परिवार है, वो भी देखभाल कर रहे हैं, पर उन्होंने अपनी पूरी शक्ति को ट्रांसफर कर दिया है कृष्ण की सेवा में। अर्जुन पहले युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं ये राज्य क्यों लूं, मेरे को जरूरत नहीं राज्य की, मैं छोड़ दिया, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि इस राज्य का भोक्ता मैं हूं, सो आई डोंट वांट टू एंजॉय इट, मैंने त्याग दिया। ये भोग करना भी गलत है और त्याग करना भी गलत है, दोनों ही इल्यूजन है। कह रहा हूं, सोचते हैं त्याग करना बड़ा अच्छी बात है, त्याग करना भी उतना ही बड़ा इल्यूजन है जितना भोग करना इल्यूजन है। एक आदमी सोच रहा है 100 रुपए का नोट गिर गया, चलो उठा करके जेब में रख लूं, तो वो तो गलत है ही। और एक ने सोचा 100 का नोट पड़ा है, चलो मैंने इसे त्याग दिया, अब तुम्हारा था ही नहीं तो तुम त्यागो कैसे इसको? आप उस चीज को त्याग सकते हैं जो आपकी है, जो नोट पड़ा हुआ है आप उसे कैसे त्यागेंगे? अब बोलो मैंने त्याग दिया, आपका था ही नहीं तो त्यागेंगे कैसे आप उसको? तो वो भी गलत है। तो भोग और त्याग ये दोनों ही गलत है, क्योंकि हमें जानना चाहिए हमारी कोई चीज है ही नहीं तो हम त्यागे किस चीज को? वी कैन नॉट रिनाउंस एनीथिंग, नथिंग बिलोंग्स टू अस, सो हाउ कैन वी से दैट वी कैन रिनाउंस समथिंग? वी कैन नॉट, एंड नाइदर वी कैन एंजॉय, दफ हम चोर बन जाते हैं। तो क्या करना है, जानते हुए कि हर चीज किसकी है, उसको उसकी सेवा में अर्पित करना है। दैट इज द फिलॉसफी। तो ना तो भोग करना है ना तो त्याग करना। तो अर्जुन क्या सोच रहे थे कि मैं राज्य का भोग नहीं करना चाहता, त्याग दिया, पर वो भी उतना ही गलत है। उनको समझना चाहिए, अर्जुन भगवान बता रहे हैं भगवद गीता के माध्यम से, अर्जुन ये युद्ध मैं चाह रहा हूं, ना कि तुम्हारे अपने भोग के लिए, मेरी सेवा के लिए। मैं चाहता हूं कि तुम युधिष्ठिर जैसे राजा, धार्मिक राजा, राजा बने, इसलिए मेरी इच्छा के अनुसार तुम युद्ध करो, ना कि अपने भोग के लिए। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, यू जस्ट बी इंस्ट्रूमेंट इन माई हैंड, ये मेरी इच्छा से हो रहा है। तुम मारो कि ना मारो, ऑलरेडी सब मर चुके हैं आज, नॉन ऑफ देम इज गोइंग बैक टू देयर होम एक्सेप्ट यू पांडव। भगवान विश्व रूप में दिखा दिए, ये सब ऑलरेडी यहां सब मरने वाले हैं, जितने भी आए हैं ऑलरेडी बाई माई एनर्जी वो सब मरने ही वाले हैं। आप मारो कि ना मारो, वो तो मरने वाले हैं, इसलिए आप निमित्त बन जाओ एंड टेक द क्रेडिट ले लो, मेरे निमित्त बन करके, इंस्ट्रूमेंट बन करके, इसे कहते हैं कृष्ण कर्मा। तो हमारे पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी भगवान ने हमको दिया है, हम उसे भगवान की सेवा में लगाएं। मान लीजिए स्टार्टिंग में पूरी तरह से यदि नहीं लगा सकते हैं 100% पूरी तरह से, क्योंकि हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, अभी एकदम से ओवरनाइट ऐसा नहीं होगा कि हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी ओवरनाइट शुद्ध हो जाएंगी। भौतिक इच्छाएं ओवरनाइट नहीं होंगी, टाइम लगेगा, क्योंकि कितने कितने जन्मों से हमने उसको संगवा के रखा है। तो इसलिए कम से कम कुछ परसेंटेज हम भगवान की सेवा में लगाएं, इसे कहते हैं सकाम कर्मयोग। तो कर्मयोग के दो पार्ट हैं, निष्काम कर्मयोग जिसमें कि कोई आसक्ति नहीं है फलों के प्रति, 100% फल भगवान की सेवा में, और देने के बाद प्रसाद रूप में केवल जितना आवश्यक है उतना लेना, मिनिमम बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ कुल के लिए लेना, उसे कहते हैं निष्काम कर्मयोग। नो अटैचमेंट एट ऑल, फलों से कोई आसक्ति नहीं है, दिस इज हायर। पर वो लेवल से नहीं है तो एक लेवल नीचे हमें रह काम करना पड़ेगा, सकाम कर्मयोग। अपनी भौतिक इच्छाएं भी हैं तो हम कुछ हद तक उनका त्याग कर रहे हैं, मतलब भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। त्याग मतलब भगवान की सेवा में लगाना, उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रियल सेक्रीफाइस। तो सकाम कर्मयोग, तो यहां से भक्ति प्रारंभ होती है कि हम समझते हुए कि जीवन का केंद्र, हमारे सभी कार्यों का केंद्र भोक्ता कौन होने चाहिए, भगवान श्री कृष्ण होने चाहिए। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, अच्छा जो कार्य कर रहे हैं वो भी भगवान के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि विम्सिकली हम कुछ भी करें और सोचें कि ये भगवान की सेवा में लगा दिया, ये भी गलत है। हमारा श्राप का ठेका है और हम सोच रहे हैं अभी तो ये हमने कृष्ण के लिए ये लगा दिया, या हम सोचें कृष्ण को श्राप ऑफर कर दिया। नो, कृष्ण कर्म मतलब फर्स्ट यू हैव टू एसर्टेन कि जो आप कर्म कर रहे हैं वो कृष्ण सैंक्शन करें, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। केवल वही कार्य जो भगवान सैंक्शन कर रहे हैं, वही कार्य भगवान को आप ऑफर कर सकते हैं। अपने मन में सोचकर कुछ भी कार्य करें और फिर भगवान को ऑफर करें, वो नहीं चलेगा। आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप उससे पूछते हैं ना आपको क्या चाहिए, मेहमान को चाहिए पानी और आप उसको लेके आ रहे हैं चाय, तो वो ऑफरिंग नहीं कराता, दैट इज नॉट गुड ऑफरिंग। तो भक्ति का मतलब भगवान को जो चाहिए हम भगवान को वो ऑफर कर सकते हैं, अपने मन से कुछ भी सोच करके ऑफर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है शास्त्रों को जानने की, गुरु के माध्यम से, अंडर स्पिरिचुअल मास्टर ये कार्य होता है कि कौन कौन सा कार्य अनुमोदित है। तो इसके लिए आप जानते हैं हमारे शास्त्रों में वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था है, चार वर्ण और चार आश्रम, कि हर एक व्यक्ति का, जैसे हमने डिस्कस किया, रजोगुण तमोगुण सतोगुण के आधार पर उसका एक शरीर मिला हुआ है, उसकी वृत्ति के अनुसार, उसके गुणों के अनुसार जो उसकी ऑक्यूपेशन बेस्ट है, उसकी नेचर के अनुसार वो वैसी ऑक्यूपेशन करे और उस ऑक्यूपेशन में रहते रहते अपने फलों को भगवान की सेवा में लगाए, जिससे उसका धीरे धीरे प्रगति होगा। तो जो वर्णाश्रम है ये जाति जन्म के आधार पे नहीं है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ब्राह्मण परिवार में जिसने जन्म लिया है वही ब्राह्मण होगा, चाहे भले ही उसके गुण और कर्म ब्राह्मण जैसे ना हो, शास्त्र में ऐसा नहीं है। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, भगवान बताएं गुण और कर्म के आधार पर है ये डिवीजन, बहुत साइंटिफिक डिवीजन है ये, ऐसा भगवान के द्वारा बनाया गया है डिवीजन सिस्टम, और ऐसी ऐसा हो ही नहीं सकता कि समाज के अंदर कभी भी ये सिस्टम हम खत्म कर सकें। हर एक सोसाइटी में चार प्रकार के वर्ग रहते ही हैं, फर्स्ट इंटेलिजेंट क्लास, थिंकर्स, साइंटिस्ट, विचारक हर सोसाइटी में रहेंगे, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले, कोई फैक्ट्री मिलेंगे तो भी वहां भी मिलेंगे, सब आपको मिलेंगे, कोई भी छोटे से ग्रुप में लेंगे वहां पर भी एक डिवीजन मिलेंगे। थर्ड मर्केंटाइल पीपल, बिजनेस करने वाले जिनकी पैसा बनाना, एंड फोर्थ लेबर क्लास पीपल। हर सोसाइटी में चार हैं, वी कैन नॉट अवॉइड इट, हर समाज के अंदर, चाहे वो कम्युनिस्ट कंट्री हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट कंट्री हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो, ये चार डिवीजन तो मिलेंगे ही, क्योंकि भगवान के द्वारा सिस्टम बनाया गया। एक इंटेलिजेंट क्लास है, एक सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, एक मर्केंटाइल क्लास है और एक लेबर क्लास है। तो भगवद गीता में, शास्त्रों में इतना साइंटिफिक डिवीजन है कि जब बच्चा होता है उसके गुणों को गुरु देखते हैं कि इसके अंदर कौन से गुण हैं। ही सुटेबल फॉर इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ वर्क, सुटेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप ऑफ वर्क, सुटेबल फॉर मर्केंटाइल टाइप ऑफ वर्क, या सुटेबल फॉर लेबर टाइप ऑफ वर्क, कोई गुण के आधार पर यह होता है। तो वो व्यक्ति जिसके जो प्रकार के गुण हैं, यदि वो उसी प्रकार कार्य करता है, ही इज बी बेटर प्रोडक्टिव। जैसे शरीर के अलग अलग अंग हैं, ब्रेन है, ये है इंटेलिजेंस क्लास ऑफ पीपल को सिग्निफाई करती है, रिप्रेजेंट करती है। हाथ है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, पेट है मर्केंटाइल क्लास उत्पादन, और पैर है लेबर क्लास। अभी चारों के चारों इंपॉर्टेंट है शरीर को पूरा रखने के लिए, बैलेंस चाहिए सब चारों में। वी कैनॉट से कि ब्रेन इंपॉर्टेंट है, लेग इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑल द फोर आर इंपॉर्टेंट। तो सोसाइटी में सभी इंपॉर्टेंट है, लेबर क्लास इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मर्केंटाइल क्लास इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जब चारों अपना अपना फंक्शन प्रॉपरली करेंगे तब बॉडी प्रॉपरली चलेगी। तो उसी प्रकार से बहुत साइंटिफिकली हमारे शास्त्रों के द्वारा हर एक अलग अलग वर्ण का अलग अलग क्रियाएं बताई गई हैं। यदि हम उनके अनुसार रहकर काम करेंगे तो, और उनके माध्यम से भगवान की सेवा करेंगे, तो फिर हम धीरे धीरे प्रगति करेंगे। इसे कहा गया है कर्मयोग। तो आई थिंक अभी ये क्लियर हो रहा है कि मत कर्म का मतलब क्या है, कृष्ण के लिए कर्म का मतलब क्या है। अपने गुणों के अनुसार हम जो भी नियत कार्य में लगे हैं, अपने गुणों के अनुसार अभी नहीं भी लगे हैं तो भी एट प्रेजेंट जिस भी कार्य में लगे हैं वो हमें ट्रांसफर करना है अभी, उसका जो बेनिफिशियरी ग्रेजुअली टू सर्विस ऑफ कृष्णा, जितना परसेंटेज में हम कर सकें उतना, 1% 2% 3%। एम पता होना चाहिए, एम है निष्काम, पूरी तरह से कर्मों के फलों से आसक्ति छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो बहुत ही जगत में रहना पड़ेगा, तो वो डिसीजन हमें करना पड़ेगा, वी वॉन्ट टू स्टे इन दिस वर्ल्ड और वी वॉन्ट टू गो बैक। अगर आसक्ति रखेंगे तो इस बहुत ही जगत में रहना पड़ेगा ही, इसलिए वन डे वी हैव टू कम आउट। तो इस प्रकार से पूरी व्यवस्था है कि धीरे धीरे आश्रम बताए गए हैं चार, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। कि पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में फर्स्ट 25 ईयर्स या पहले के समय में पूरा उसको शास्त्र का ज्ञान दिया जाए, समझे कौन कौन से आश्रम है, कौन कौन से वर्ण है, और उसके बाद फिर वो गृहस्थ आश्रम में एंटर करे जहां पर उसकी जो भोग इच्छाएं हैं उनको भी पूरा करे, पर अंडर रेगुलेशन, नॉट आउटसाइड रेगुलेशन। तो उसका पाप करने लगता है, फिर बंधन नहीं होता है उससे, क्योंकि ही इज डूइंग अंडर रेगुलेशन। और फिर करते 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 धीरे धीरे फिर वानप्रस्थ आने पर जब बच्चे बड़े हो जाएं, सो ही उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके देन ही इज फ्री नाउ, रिटायरमेंट टाइम, जिससे कि अभी वो अपनी शक्ति को पूरी तरह से अभी भगवान की तरफ लगाए और प्रिपरेशन करे अपने फाइनल एग्जाम की, डेथ की, वानप्रस्थ और फिर संन्यास अगर ले सके तो। लेकिन मतलब ये पूरा इस तरह से प्रोसेस है। तो धीरे धीरे ये व्यवस्था इतनी अच्छी है, आप देखिए समाज का हर वर्ग इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, एवरीबॉडी, इंटेलेक्चुअल भी, लेबरर भी, कोई भी, सबके लिए भगवान ने रास्ता दिया है, सबके लिए अपने अपनी वर्णाश्रम धर्म के द्वारा, ये ग्रेजुअल प्रोसेस के द्वारा भगवान ने सबके लिए दिया है। तो इस प्रकार से मत कर्म कृत, कृष्ण का कर्म करना है, और धीरे धीरे फिर ये प्रगति होकर के हम शुद्ध होंगे और जो हमने सब स्टेप्स बताए हैं वो करेंगे। अब इसमें दो तीन एक कन्फ्यूजन रहते हैं जो बहुत बड़े हम सबके दिमाग में जनरल एक मिसकन्फ्यूजन रहता है, मिसकंसेप्शन रहता है। एक तो कर्म ही पूजा है, ये एक धारणा सबके मन में होती है, कर्म ही पूजा है। अगर हम अपना कर्म कर रहे हैं प्रॉपरली तो हमें और कोई पूजा की आवश्यकता नहीं है, कर्म ही पूजा है। अगर हम अपना कर्म कर रहे हैं दैट इज ऑल इन ऑल, दैट इज सफिशियंट फॉर अस फॉर लिबरेशन, वो हमारे जीवन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए, जो भी कह लीजिए, पर्याप्त है। तो इस विषय में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, यतः प्रवर्तिर भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम सिद्धिम विन्दति मानुषः। अपने स्वकर्मणा, अपने कर्मों से भगवान की सेवा करके सिद्धि प्राप्त होती है। कहीं भी शास्त्र में भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि केवल अपने कर्मों करते जाओ सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, कितना भी अटैचमेंट आपका है उन रिजल्ट से कोई बात नहीं, करते जाओ सिद्धि हो जाएगी। कई लोग ऐसा मानते हैं, भगवद गीता का संदेश क्या है, डू योर वर्क। अगर इतना आसान होता तो इतनी बड़ी फिलॉसफी हमको पढ़ने की जरूरत क्या थी, 6 सेशन लेने की। हम पहले दिन आते और सीधा बोलते डू योर वर्क, तो आप तो कर ही रहे हैं सब अपना काम, बस कीप ऑन डूइंग योर वर्क, तो फिर इतना सब समझना, इतना सब उसकी कोई आवश्यकता नहीं। ऑब्वियसली भगवदगीता का संदेश ऐसा नहीं है कि जस्ट डू योर वर्क, डू योर वर्क बट इन विच कॉन्शियसनेस, किस भावना में, नो वट एवर, नो जस्ट नॉट डूइंग हार्ड वर्क, एस इज ऑल्सो डूइंग हार्ड वर्क, गॉड वर्क। अच्छा, मैं से हार्ड वर्क कह रहा हूं। तो काम वही है पर चेतना में परिवर्तन लाना है, दैट इज द मैसेज। उसे कृष्ण भावना कहते हैं। अभी हम जो काम कर रहे हैं उसके अंदर हमारी भावना क्या है, अहम भोक्ता, आई एम द एंजॉयर ऑफ दिस वर्क, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द एंजॉयर, ये कारण है बंधन का। उसी कार्य में जब हम अपनी चेतना को, कॉन्शियसनेस को बदल देते हैं, कृष्णा इज द प्रोप्राइटर, आई एम द सर्वेंट, रिजल्ट इज फॉर कृष्णा, वही काम होगा लेकिन नाउ इट विल कॉल योगा। योगा मीन्स विच विल कनेक्टेड टू कृष्णा, जो कृष्ण के साथ आपको जोड़ देगा, भगवान के साथ जोड़ देगा। तो चेतना बदल गई, तो केवल कर्म करने की बात नहीं है। तो कर्म पूजा कब बनता है, जब वो भगवान की सेवा में उसको यूज करते हैं हम, तब वो बनता है, तब बनता है। ऐसा नहीं कि केवल अपने आप बस कर्म करने से आता है। अगर आप उससे अटैच है अपने फलों से तो आप भौतिक जगत में रहेंगे, देन इट इज नॉट कॉल्ड, तो आपकी सिद्धि का मार्ग नहीं हो, तब इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु का मार्ग है वो। लेकिन कर्मों के फलों से अनासक्त होकर और भगवान को उन फलों को देकर के हम सिद्धि की तरफ चलते हैं, फिर वो स्टेजेस आती हैं कि हमारी भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती है, भौतिक जगत में आसक्ति कम होती है, और फिर लास्ट में वो स्टेज आती है कि हम हमेशा भगवान का स्मरण करते करते देह त्याग सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। तो एक तो ये एक डाउट है। एक दूसरा एक फिलॉसफी है, मानव सेवा माधव सेवा। मानव की सेवा करना ही माधव की सेवा है। अगर आप गरीब लोगों को खाना दे रहे हैं, अनाथ आश्रम खुलवा रहे हैं, वृद्ध आश्रम खुलवा रहे हैं, वही माधव की सेवा है। घर में मंदिर रखना, पूजा करना, मंदिर बनवाना, मंदिर में जाना कोई आवश्यक नहीं है। अगर आप मनुष्यों की पूजा कर रहे हैं, मतलब मनुष्य की सेवा कर रहे हैं, या मनुष्य की साइड में और जीव प्राणियों की, कबूतरों को खाना डाल रहे हैं, या गाय को आप खिला रहे हैं, जानवरों की भी आप सेवा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तो सब में विराजमान है, हर में भगवान है, इसलिए आप उनकी सेवा कर रहे हैं, उसके माध्यम से ऑटोमेटिकली भगवान की सेवा हो रही है। और इसके अलावा घर में मंदिर में जाकर के एक पत्थर को पूजने की क्या जरूरत है, एक बहुत बहुप्रचलित एक विचारधारा है कि मंदिर में जाने से क्या फायदा पत्थर को पूजने से। अरे भगवान तो सबके हृदय में है, भगवान तो सब में व्याप्त है, इसलिए सब लोगों को जिसको जो चाहिए उसको वो पूरा करो, यही माधव की पूजा है। तो हम देखें क्या ये सच बात है, क्या मानव सेवा ही माधव सेवा है, कैसे है। तो ये जो हमने भगवद गीता का श्लोक पढ़ा 12वां, जिसमें भगवान बता रहे हैं अलग अलग स्टेप्स, सबसे ऊपर का स्टेप बताए, उसके नीचे का स्टेप बताए, उसके नीचे का स्टेप बताए, उसी में भगवान आगे बताते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि यदि हम डायरेक्ट हमेशा से भगवान का चिंतन नहीं कर पा रहे हैं और पूरी तरह से भगवान की जो भक्ति सेवा के अंग है नवविधा भक्ति उसमें नहीं लग पा रहे हैं, तो नेक्स्ट हम स्टेज पे आए कृष्ण कर्म करना, कृष्ण कर्म कृत मत परमो, और भगवान श्री कृष्ण को परम मानना, ना कि ब्रह्म ज्योति को या तो किसी देवी देवताओं को। तो मत कर्म कृत मत परमा मत भक्त, भगवान का फिर भक्त बनना। तो ये स्टेज बताए, फिर भगवान बता रहे हैं नेक्स्ट स्टेज में, इफ हाउएवर यू आर अनेबल टू वर्क इन दिस कॉन्शियसनेस ऑफ मी, एक और स्टेप डाउन, अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं, देन ट्राई टू एक्ट गिविंग अप ऑल रिजल्ट्स ऑफ योर वर्क एंड ट्राई टू बी सेल्फ सिचुएटेड। तो क्या करो, अपने फलों को बस त्याग दो किसी को, फॉर सम गुड कॉज, फॉर सम गुड कॉज जस्ट सेक्रीफाइस योर रिजल्ट। इसका ट्रांसलेट थोड़ा पढ़ेंगे, इट मे बी दैट वन इज अनेबल इवन टू सिंपेथाइज विद द एक्टिविटीज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस बिकॉज ऑफ सोशल फैमिलियल और रिलीजियस कंसिडरेशन और बिकॉज ऑफ सम अदर इंपेडिमेंट्स। If one attaches himself directly to the activities of Krishna consciousness, there may be objections from family members or so many other difficulties. For one who has such a problem, it is advised that he sacrifice the accumulated result of his activities to some good cause. Such procedures are described in the Vedic rules. There are many descriptions of sacrifices and social functions of punya or special work in which the result of one's previous action may be applied. Thus, one may gradually become elevated to the state of knowledge. It is also found that when one who is not even interested in the activities of Krishna consciousness gives charity to some hospital or some other social institution, he gives up the hard-earned result of his activities. That is also recommended here because by the practice of giving up the fruits of one's activities, one is sure to purify his mind gradually, and in that purified state of the mind, one becomes able to understand Krishna consciousness. So, jitne bhi samaj seva ke karya hote hain, wo is star pe aate hain. This is the fourth level which we are talking now. कि कोई भगवान की डायरेक्ट सेवा या भगवान के प्रति कर्म या भगवान को समर्पित भी नहीं कर सकता, तो क्या करो, कम से कम अपने जो हार्ड अर्न मनी है कम से कम उसको अपने आप फिर भी भोग मत करो, क्योंकि हमने बताया सिद्धांत, अपने ऊपर भोग करेंगे तो बंधन होगा ही, तो उसे क्या करें, किसी अच्छे कॉज के लिए कर दीजिए, गरीबों को दान दीजिए, कुआं खुदवाइए, हॉस्पिटल खुलवाइए, जहां पर कि शारीरिक स्तर पर सेवा करते हैं आप, फॉर सम गुड कॉज करिए, तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली ज्ञान आएगा, डिटैचमेंट आएगा धीरे धीरे, और फिर आप धीरे धीरे एक दिन आकर के आप कृष्ण कॉन्शियसनेस को समझ सकते हैं, कृष्ण भक्ति को समझ सकते हैं। तो इस तरीके से एक संक्षेप में देखें तो भगवान भगवद्गीता में आध्यात्मिक प्रगति के दो मार्ग बताए हैं, वन इज डायरेक्ट प्रोसेस और दूसरा है इनडायरेक्ट प्रोसेस। जैसे एक बड़ी बिल्डिंग है, उसमें चढ़ने के दो तरीके होते हैं, एक है स्टेयरकेस और एक है लिफ्ट। भक्ति मार्ग जो तरीका है वो है लिफ्ट, डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या है, जिसमें पहले से ही व्यक्ति जानता है कि अंतिम लक्ष्य कृष्ण है, उनका धाम पहुंचना, वो अंतिम लक्ष्य है। इस जानकारी के साथ अभी वो कर्म योग प्रारंभ करता है, पहले सकाम कर्म योग करता है, यानी कि अपनी इच्छाएं भी है अभी, लेकिन अपनी जो हार्ड अर्न मनी है या जो भी है उसका कुछ भाग भगवान की सेवा लगाता है, जिससे धीरे धीरे वो सकाम कर्म योग से निष्काम आता है। निष्काम कर्म योग पूरी तरह से फलों से आसक्ति को छोड़ करके पूरी तरह से भगवान को अपने फलों को समर्पित करता है, और फिर धीरे धीरे उसके आगे उठ करके फिर भक्ति के जो डायरेक्ट प्रोसेसेस हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, अधिक से अधिक उनको अपनाना शुरू करता है, जिससे उसका चित्त मन अधिक से अधिक भगवान के चिंतन में रहता है, और फिर ऐसे करके धीरे धीरे वो शुद्ध भक्त के स्तर पर आता है, जहां भगवान से उसको प्रेम डेवलप होता है और फिर भगवत धाम जाता है। दिस इज डायरेक्ट प्रोसेस, दिस इज लिफ्ट। दूसरा है इनडायरेक्ट प्रोसेस, जिसमें कि व्यक्ति को यह पता नहीं होता कि अंतिम लक्ष्य क्या है, अंत में उसे कहां जाना है, कृष्ण कृष्ण लोक इत्यादि का जानकारी नहीं है या विश्वास नहीं है, तो वो क्या करता है, आध्यात्मिक प्रगति करता है। हम यहां उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जो आध्यात्मिक प्रगति के पथ में है, इससे नीचे तो 90% वो लोग हैं जो आध्यात्मिक प्रगति करना ही नहीं चाहते हैं, उनको तो वो तो केवल भौतिक जगत में भोग करने के लिए ही उनकी इच्छा है और इसी में पड़े रहना चाहते हैं, वो तो सबसे नीचे ही है, और मेजोरिटी लोग उसी में है कैटेगरी में, उनका जीवन का लक्ष्य है तो केवल भौतिक जगत में एंजॉय करना है। हम यहां पर केवल उनकी बात करें, योगी हैं जो, यानी जो भगवान के साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं, केवल उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं, उन्हीं के लिए दो प्रोसेसेस हैं ये। तो सेकंड में जो इनडायरेक्ट है, उसमें व्यक्ति भगवान का कंसेप्शन सो क्लियर नहीं है कि परम लेवल क्या है, वो तो प्रारंभ करता है सकाम कर्म योग से, वहां पर भी कर्म योग है, पर वहां पर वो कृष्ण को अर्पित नहीं करता, बल्कि ऐसे हॉस्पिटल को या दान दक्षिणा करता है। ऐसा करने से क्या होता है, धीरे धीरे उसकी भी आसक्ति कम होती है, वहां पर भी निष्कामता आती है धीरे धीरे, और निष्काम कर्म योग करने से क्या होता है, ज्ञान नेक्स्ट स्टेज पे आता है, ज्ञान, जिसे ज्ञान योग कहते हैं। कर्म योग फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप ज्ञान योग। अभी उसको ज्ञान आता है थोड़ा भगवान के विषय में, ब्रह्म क्या है, हम शरीर नहीं हम आत्मा है, ये ज्ञान उसको रियलाइज होता है। अभी तक तो उसको क्लियर नहीं था कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, पर ये निष्काम कर्म योग से क्या होता है, निष्काम कर्म से अपने कर्मों के फलों को समर्पित करने से क्या होता है, नॉलेज अंदर से जनरेट होता है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, ज्ञान योग। और फिर ज्ञान के बाद धीरे धीरे जब वो आगे जाता है तो ध्यान योग, धीरे धीरे भी वो ध्यान करना शुरू करता है, जनरली निराकार ब्रह्म पे, कि हाँ एक कोई शक्ति है, कोई एक अद्भुत शक्ति है, उसके ऊपर ध्यान करना प्रारंभ करता है, तब वही योगी कहलाया जाता है ध्यान योगी। और ऐसा ध्यान योगी या ज्ञान योगी या कर्म योगी किसी भी स्टेज में, जब भी वो भगवान के भक्त का संग कर लेता है किसी भी स्टेज पर, तो वहां से वो ट्रांसफर हो जाता है भक्ति योगी में, डायरेक्ट प्रोसेस में आता है। नहीं तो यदि वो अपने ही प्रोसेस में रहता है और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, पूरी तरह से डैश हो गया, भौतिक जगत से पूरी तरह से अनासक्त हो गया, तो वो कहां जा सकता है, मैक्सिमम ब्रह्म ज्योति में जा सकता है। ब्रह्म का चिंतन करते हुए परफेक्शन को यदि वो प्राप्त किया तो वो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो सकता है, बस भगवत धाम नहीं जा सकता, भगवान के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकता, और वहां जो बहुत समय रहने के बाद भी वापस आने की चांसेस है। तो ये इनडायरेक्ट प्रोसेस है और ये डायरेक्ट प्रोसेस है। डायरेक्ट प्रोसेस में व्यक्ति को पता होता है कि कहां जाना है और सीधा भगवान का आश्रय लेकर के वो करता है, वो सब काम करता रहता है। एक ज्ञान योगी को तो एक स्तर पर आने पर अपने कर्म छोड़ने पड़ते हैं, एक ध्यान योगी को एक स्टेज पर आने पर अपने सब कर्म छोड़ने पड़ते हैं, जंगल में जाकर के ध्यान करना पड़ता है, सब कर्म छोड़ने पड़ते हैं, पर भक्ति योगी को ऐसा नहीं करना पड़ता, उसको केवल अपने कर्मों की कॉन्शियसनेस को चेंज करना है। पहले वो अपने कर्मों को अपने लिए यूज कर रहा था और अभी वो शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पहुंच करके भी अपने कर्मों को अभी पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाता है। क्योंकि भक्ति के मार्ग में तो आगे तक भी क्रियाएं रहती हैं, शुद्ध वैकुंठ पहुंचने पर भी क्रियाएं, भक्ति क्रियाएं खत्म नहीं होती हैं, पर नेचर बदल जाता है, कॉन्शियसनेस बदल जाता है, अभी हर चीज कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होने लगती है। तो इसलिए ये मार्ग ऐसा है, पर जो ज्ञान मार्ग है उसमें तो आपको एक स्टेज में आने पर सब सेसेशन, कंप्लीट सेसेशन, संन्यास, वहां पर संन्यास का मतलब है सब कुछ छोड़ना। पर भक्ति योग में ऐसा नहीं है, वहां पर केवल कॉन्शियसनेस को चेंज करना है धीरे धीरे। तो यह है डायरेक्ट प्रोसेस और यह है इनडायरेक्ट प्रोसेस। भगवान भगवद गीता में जिस प्रोसेस को इम्फेसाइज किए हैं, बताए हैं, वो है डायरेक्ट प्रोसेस। क्योंकि इनडायरेक्ट प्रोसेस में प्रगति बहुत स्लो होता है और कभी भी हो सकता है कि आप कभी भी हाईएस्ट पॉइंट पर ना पहुंच पाए, जब तक आपको भक्त का संग नहीं मिलेगा नहीं। और अल्टीमेटली तो आपको भगवान के भक्ति में आना पड़ेगा ही, भगवत धाम जाने के लिए दो ही उपाय है। इसलिए डायरेक्ट प्रोसेस है जो भगवान रिकमेंड करते हैं, मैया आसक्त मना पार्था योगम युंजम मदाश्रय, बी अटैच टू मी, मन मना भव मद भक्तो, बिकम माई डिवोटी, अगेन एंड अगेन कृष्णा इज अगेन एंड अगेन टेलिंग, डायरेक्ट प्रोसेस। इसको करने से अपने आप बाकी सब अपने आप मिल जाता है, जो भी इनडायरेक्ट प्रोसेस के रिजल्ट है वो तो मिल ही जाते हैं, बल्कि और आगे भगवत धाम जाने को मिलता है जो यहां नहीं पॉसिबल है, इनडायरेक्ट में नहीं पॉसिबल है। तो ये इस तरह से हमने एक संक्षेप में, एक समराइज में मैं पढ़ा कि प्रोसेसेस कैसे कैसे हैं। तो हमने देखा कर्म योग से हमने प्रारंभ किया, और कर्म योग से एक नीचे स्तर है कर्मकांड, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कर्मकांड बहुत कॉमन है। कर्मकांड में क्या होता है, व्यक्ति को दिव्यता का कोई ज्ञान नहीं है, उसका लक्ष्य वो नहीं है, उसका लक्ष्य तो भौतिक जगत में भोग करना है, पर शास्त्र के अनुसार भोग करना, शास्त्र के विधानों के अनुसार भोग करना, इसे कहते हैं कर्मकांड। ये देवी देवता की पूजा करो उससे आपको ये फल मिलेगा, ये यज्ञ करो उससे आपको ये फल मिलेगा, इसे कहते हैं कर्मकांड, जो हम जनरली करते हैं सभी लोग अधिकतर। या तो और थोड़ा ऊपर जाएं, ये करो तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इस भौतिक जगत में नहीं रहना है वो तो बेकार है ही, फिर भी क्या मिलेगा, स्वर्ग लोक में जाने की इच्छा, ये भी कर्मकांड के अंदर आता है। इससे भी नीचे वो लोग आते हैं जो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं बिना भगवान को सरेंडर हुए, बिना शास्त्र के अनुसार मनमाने तरीके से, वो बिल्कुल ही थर्ड क्लास एथिस्टिक क्वालिटी में आते हैं वो लोग। वो कहते हैं हम ही भगवान है, कौन भगवान है, हम खुद भगवान है, जो चाहेंगे वो करेंगे, हमारे हाथ में है सब कुछ। तो वो लोग तो भगवान बताते हैं उनको मैं नरक की योनि में डालता हूं। उसके ऊपर है कर्मकांडी, उसके ऊपर है फिर कर्म योगी, और उसके ऊपर है ज्ञान योगी, उसके ऊपर ध्यान योगी, और उसके ऊपर भक्त। दिस इज द ग्रेजुअल प्रोसेशन योगा लीडर, जिसमें हम लोग को धीरे धीरे जाना है। सो वी विल एंड हेयर टूडे। तो इस तरह से हमने प्रोसेस पढ़ा है। अभी कल हम लोग फाइनल कंक्लूडिंग सेशन में, जैसे हमने देखा मत कर्म कृत्व समय में आ गया, अभी उसके साथ साथ भगवान को समर्पित करना है कर्म, और जो आगे बढ़ने के लिए जो भक्ति योग का जो नवविधा जो हमने बोला, हियरिंग चैंटिंग श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, वो सब कैसे इंक्लूड करना है अपना कर्म करते करते, कृष्ण कर्म करते करते, भगवान कृष्ण के लिए कर्म करते करते, उसको कैसे भगवान के चिंतन को कैसे साइड में कंबाइन करना है, कि भगवान का चिंतन भी हो और भगवान को कर्म समर्पित भी हो, ये कैसे करना है प्रैक्टिकली। आप अपना जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसको कैसे कृष्णमय बनाएं, फिर घर के अंदर कैसे हमको अर्चविग्रह की पूजा कैसे कर सकते हैं, क्या आधारभूत नियम है भक्ति योग के, प्रसाद का भोग लगाने का प्रोसीजर क्या है, क्यों है, क्या सिद्धांत है कि भगवान खाते हैं। कई लोग बोलते हैं अरे भगवान तो खाते नहीं है, आपके बस मन की भावना है, इसका सिद्धांत क्या है। फिर अर्चविग्रह की पूजा का सिद्धांत क्या है, क्या ये पत्थर है, क्या ये केवल मन की भावना है, यही वास्तविकता है। ऐसे कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक्स, और प्रैक्टिकली अभी पूरा निचोड़ करके ये पूरी भक्ति को एट प्रेजेंट जिस भी स्टेज में हम हैं, जो भी जिम्मेदारियां हमारी हैं, जहां भी जिस पोजिशन में है, वहां रहते रहते बेस्ट इजिएस्ट वे में कैसे करेंगे। और साथ में हम डिस्कस करेंगे हरिनाम, जो कलयुग का संकीर्तन, जो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है, जो कलयुग का युग धर्म है, जो हम हर बार चैंटिंग करते हैं प्रारंभ में और अंत में, उसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे जीवन में, ये टॉपिक्स हम फाइनल कंक्लूडिंग सेशन में कल देखेंगे। सो दिस टॉपिक, हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स?
स्वामी जी, संसार में भगवान मतलब जैसे शुरुआत काम की करे तो गणेश जी को पूजा करो, विद्यार्थी अवस्था में विद्या प्राप्त करने के लिए सरस्वती माता को शक्ति लेने के लिए दुर्गा जी को, फिर शिव जी, तो उसमें ये सब में मतलब पूरे जीवन में कोई एक भगवान फिक्स करे तो ये क्या नहीं मिल सकता
है? यही भगवद गीता का संदेश है। 33 करोड़ देव देवता हैं, हमने वो चार्ट में देखा, वो सब अलग अलग डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, पर वो सब डिपार्टमेंट के इंचार्ज इंडिपेंडेंट तो काम नहीं कर रहे हैं। वो किसके द्वारा कंट्रोल्ड है? वो एक ही भगवान के द्वारा कंट्रोल्ड है, भगवान कहीं नहीं हो सकते।
एक शक्ति होगी
भैया, शक्ति तो हम बता रहे हैं कौन शक्ति है, कृष्ण है वो। अभी भी शक्ति की बात कहां रह गई, शक्तिमान की बात कीजिए अभी आप। हमने देखा एक शक्तिमान है, एक शक्ति है, तो शक्ति तो है ही, शक्ति है दुर्गा जी, वो शक्ति का रूप है उनकी। शक्तिमान है कृष्ण या विष्णु या राम, वो शक्तिमान है, उन्हीं के अंदर में सब काम करते हैं। भगवान बताते हैं कि जो फल हमें देवी देवता देते हैं, वास्तव में तो भगवान बोलते हैं वो मैं ही देता हूं। अभी नरेंद्र मोदी को सैंक्शन कर रहे हैं, अल्टीमेटली तो सेंटर से सैंक्शन होगा तभी तो नरेंद्र मोदी दे पाएंगे, नहीं तो वो कैसे दे पाएंगे उसको। तो उसी प्रकार से कोई भी देवी देवता जो भी कुछ हमें वरदान देते हैं, वास्तव में तो भगवान के ही द्वारा दिया जाता है, लेकिन जो जानते नहीं है इसको, वो लोग सोचते हैं कि नहीं ये देवी देवता इंडिपेंडेंट है या ये इनके लिए हमको इनकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन जानता है कि इन सबके ऊपर कृष्ण है, वो केवल कृष्ण को पूजा गया और ऑटोमेटिकली सबका फल उसको मिलेगा, क्योंकि देवी देवता कौन है, वो स्वयं भगवान के भक्त हैं। हमको समझ पर देवी देवता कौन है, एक जेल है, जेल के अंदर क्या होता है, कुछ कैदी जो सुधर जाते हैं उन्हीं को दूसरे कैदियों के ऊपर केयर रखने का काम दे दिया जाता है। आप रोज जो है सब कैदियों को खाना दो, वो भी कैदी हैं बट वो अभी सुधर गए हैं, सुधरने के रास्ते में है, तो उन्हीं को दूसरे कैदियों के ऊपर कंट्रोल करने को दे दिया जाता है। तो उसी प्रकार से देवी देवता खुद भी इसी भौतिक जगत में अभी भी उनकी सकाम थोड़ी सी भौतिक इच्छाएं हैं, उनको भगवान इस मेटेरियल वर्ल्ड का मैनेजमेंट देते हैं। आप इंद्र की पोस्ट में रह करके बारिश का मैनेजमेंट कीजिए, आप ये मैनेजमेंट कीजिए, मैनेजमेंट कीजिए, वो सभी जीव हैं हमारी तरह, पर हमसे बहुत प्रगत, हमसे बहुत महान भक्त हैं, लेकिन शुद्ध भक्त नहीं है अभी भी, इसलिए भौतिक जगत में अभी भी है। तो देवी देवता जो है वो इस तरह से हैं। अभी जैसे गणेश जी हैं विघ्न विनाशक, तो आप ब्रह्म संहिता में पढ़ेंगे कि गणेश जी की जो विघ्न विनाशक शक्ति है उसका स्रोत क्या है, कि वो हमेशा नृसिंह भगवान के चरण की पूजा करते रहते हैं। वास्तव में विघ्न विनाशक नृसिंह भगवान है, विष्णु का रूप है, जो उनसे शक्ति आती है गणेश जी को। अगर आप कृष्ण की पूजा कर रहे हैं उसमें ऑटोमेटिकली एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, क्योंकि ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। मत्ता परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, देयर इज नोबडी इक्वल टू हायर देन मी। मत्ता परत अहम सर्वस्य प्रभवः मत्त सर्वं प्रवर्तते, आई एम द ओरिजिन सोर्स ऑफ एवरीथिंग। अहम आदिर ही देवानाम, आई एम द आदि ऑफ ऑल द देवतास। शास्त्रों का एक मत से इवन सभी डेमीगॉड्स, शिव जी क्या कहते हैं, आराधना नाम सर्वेर विष्णु आराधनम परम, खुद शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी को, सभी प्रकार की आराधनाओं में विष्णु की आराधना परम। शिव जी दूसरा स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुक्तिर प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एव ही न संशय, मुक्ति प्रदाता तो केवल एक विष्णु है। देखिए देवी देवता खुद मुक्त नहीं है, इसलिए वो कई मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते किसी भी जीव को, भौतिक सुख प्रदान कर सकते हैं भगवान की सैंक्शन से, पर मुक्ति क्योंकि वो खुद मुक्त नहीं है इसे नहीं प्रदान कर सकते। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से मांगा मुझे अमर बना दो, ब्रह्मा जी ने बोला मैं खुद अमर नहीं तो आपको कैसे अमर बनाऊंगा मैं। तो हिरण्यकश्यपु ने सोचा ठीक है, अभी मैं थोड़ा इंटेलिजेंट हूं, ठीक है मैं दिन में नहीं मरूं, हाँ ठीक है ये कर सकता हूं, रात में भी नहीं मरूं, ठीक है ये भी कर सकता हूं, ऐसे कर करके बाहर नहीं मरूं, अंदर नहीं मरूं, वेपन से नहीं मरूं, आदमी से नहीं मरूं, जानवर से मरूं, सब तरह से उसने पकड़ लिया। और फिर सोचा हाँ अभी ब्रह्मा जी मूर्ख बन गए, मैंने इनडायरेक्टली मांग लिया कि मैं अमर हो गया, लेकिन वो नहीं जानता कि भगवान की शक्ति के आगे वो नहीं है। तो भगवान फिर नृसिंह रूप में सब कंडीशन फुलफिल करते हैं और फिर भी मार देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी उनके सर्वेंट हैं, इसलिए उनकी वो प्रॉमिस को गलत नहीं सिद्ध करवाना चाहते, इसलिए वो सब कंडीशन ही फुलफिल करते हैं और फिर भी मार देते हैं। जो देवी देवता है सेकेंडली, वो जो आप फल मांगते हैं वो अगर खुश होकर दे देते हैं, दे डोंट कंसिडर वेदर इट इज यूजफुल फॉर यू एंड फॉर सोसाइटी। जैसे कि जैसे कि भस्मासुर, उन्होंने मांगा कि मैं जिसके हाथ पे सिर पे हाथ रखूं। अब शिव जी हैं आशुतोष, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, यस तो उन्होंने दे दिया ओके। अभी और भस्मासुर पहले सबसे पहले का शिव जी को ही पहले मैं चेक कर लेता हूं, तो उन्हीं को पहले चेक करने के लिए कभी शिव जी को भी फिर दौड़ना पड़ा पीछे पीछे, अंत में विष्णु जी के पास, और फिर भगवान विष्णु ने कहा ओके ये आपने गलती किया है, अभी रियलाइज हो गया ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी में आशुतोष ऐसे कर देते हैं। तो फिर उसको मोहिनी रूप लेकर के इस तरह से उसको नित्य नचाया और बोला अरे तुम किसकी बात मान रहे हो, शिव जी की, वो कोई ऐसे उनकी बात मान रहे हो, कुछ भी नहीं है उसमें, देखो अपने सिर पे हाथ रख के देख लो कुछ नहीं है, रखा खत्म। फिर रावण, रावण की शक्ति का स्रोत शिव जी, ऐसे बहुत सारे वृत्तांत हम देख सकते हैं। लेकिन शिव जी खुद भगवान के महान भक्त हैं, वैष्णव नाम यथा शंभो, भगवान के परम भक्त हैं शिव जी स्वयं।
No. ऐसा हम मानते हैं
या
राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार
हैं। या
कृष्ण जी ने अपनी ही भगवत गीता में कहा है मैं ही वो हूँ अल्टीमेट।
यस,
तो ये कॉन्ट्रडिक्ट क्यों कर रहे
हैं? ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं है, इसको समझने की बात है। एक मालिक है, उसकी बहुत सारी कंपनी है, एक दिल्ली में है, एक बॉम्बे में है, अलग अलग ऑफिस है, वो तो हर जगह नहीं रहता है, वो तो एक अपने स्थान पे आराम स्विट्जरलैंड में कहीं आराम से रहता है, और उसके सब मैनेजर्स हैं अलग अलग कंपनी में, वो लोग सब काम करते हैं। अभी टाइम टू टाइम उसका मन करता है कि ठीक है आज जाके देखूँ दिल्ली ऑफिस में क्या हो रहा है, तो वो फ़ोन करता है अपने मैनेजर को दिल्ली में कि आई एम कमिंग। तो अभी वो जो मैनेजर है वो एयरपोर्ट पे आएगा अपनी कार में ले जाएगा। तो अभी जो लोग वहाँ उस ब्रांच में हैं दे हैव नेवर सीन द प्रोप्राइटर, उनके लिए सबसे बड़ा अभी तक कौन है? वही है। और अभी जो प्रोप्राइटर आया है वो भी उसी कार में आया है, ही इज कमिंग थ्रू हिम। इसलिए भगवान ने इस भौतिक जगत में भगवान डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो महाविष्णु के द्वारा ये सब करवाते हैं खुद, और कभी खुद तो वहीं रहते हैं। इसलिए जब भगवान या कोई भी अवतार होते हैं तो वो फंक्शन है विष्णु के थ्रू आते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि विष्णु के थ्रू हम आते हैं। लेकिन अगर ब्रह्म संहिता में पढ़ेंगे तो स्पष्ट ब्रह्मा जी बताते हैं विष्णु यथा कला विशेषम, भगवान विष्णु जिनकी कला विशेष है, एक्सपेंशन है जिनकी, वो है गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो इस तरह से
एक्चुअली
ऐसा नहीं है कि हर एक अपना लिखे,
स्वयं शिव जी के मुख से हुई है वर्णन। पार्वती जी को सुनाई थी।
यस, तो आप फिर देखिए भागवतम के अंदर भगवान शिव पार्वती जी को बोल रहे हैं आराधना नाम सर्वेर विष्णु आराधनम परम। हाँ। हे देवी, सही प्रकार की आराधनाओं में भगवान विष्णु की आराधना परम है। तो कैसे समझे? किसी किसी शास्त्र में अलग अलग में किसी को महान बताया गया है। हाँ। देवी शास्त्र में देवी को महान बताया गया, उसमें देवी। तो इसको कैसे समझना है कि जैसे जिस प्रकार के ऑडियंस होता है कई बार उन लोगों के हिसाब से वो ज्ञान दिया जाता है, कई बार अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग। जो लोग बहुत आसक्त हैं भौतिक जगत में, उन्हें अपनी भौतिक आसक्ति पूरी करने के लिए उनका काम केवल वहीं से होता है। अभी एक गुजरात के अंदर कोई मीटिंग हो रही है, वहां नरेंद्र मोदी आए हैं, तो वहां स्वाभाविक रूप से हम बोल सकते हैं हमारे सबसे बड़े नरेंद्र मोदी जी यहां उपस्थित हैं, क्योंकि इस समय जिस सापेक्ष में, जिस परिपेक्ष में बोला जा रहा है वहां पर सबसे बड़े वो हैं। लेकिन अगर हम शास्त्रों को एज ए होल कंप्लीट पढ़ेंगे, समझेंगे, और कैसे परंपरा के द्वारा हमने पहले ही बताया था, तो फिर हमें क्लियर होगा कि कौन क्या है। अगर हम अलग अलग जगह से छोड़ पढ़ेंगे तो वी कैन गेट कंफ्यूज्ड इजीली। जैसे एक मुस्लिम था, वो मस्जिद के बाहर बैठता था, कभी मस्जिद में नहीं जाता था। तो किसी ने पूछा भाई तुम मस्जिद में रह के भारी हो और मस्जिद में नहीं जाते? बोले कुरान में लिखा है कि मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। बोले ये कैसे हो गया कि कुरान में लिखा है मस्जिद में नहीं जाना चाहिए? बोला मैंने पढ़ा है कुरान में, तो दिखाओ। तो देखो उसके ऊपर, सबसे ऊपर लिखा पेज के ऊपर, मस्जिद में कभी नहीं जाना चाहिए। तो उससे पहला पेज पलट के देखा, हाथ पैर धोए बिना मस्जिद में कभी नहीं जाना चाहिए। तो उसने वो नहीं पढ़ा, उसको केवल वो पढ़ लिया तो पूरा कंफ्यूजन हो गया। तो इसलिए कई बार हम क्या करते हैं, शास्त्र का केवल एक भाग पकड़ के बैठ जाते हैं। जैसे भगवद गीता की अलग अलग लोग अलग अलग मंतव्य निकाल रहे हैं, जिसको जो अच्छा लगता है बस वो श्लोक पकड़ के लेता है, एज ए होल नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि शास्त्र को समझने का तरीका है, शास्त्र अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि ये बात हो रही है पर जगत की, इसलिए इसको समझना, हमने पिछले पहली क्लास में बताया था शास्त्र को समझने का तरीका है भगवान से जो आई शिष्य परंपरा है आचार्यों के माध्यम समझेंगे तभी शास्त्र को यथारूप उनका संदेश समझ सकते हैं। नहीं तो ऐसे आपको बहुत जगह मिलेगा जहां भगवान शिव जी की पूजा कर रहे हैं, और ऐसे अनेक वृत्तांत मिलेंगे जहां शिव जी भगवान की पूजा करते हैं, दोनों मिलेंगे आपको।
यस
यस, है ना,
विष्णु नित्य ध्यान में रहते हैं।
ऐसे तो कैसे समझे? अभी भगवान श्री कृष्ण है वो अर्जुन के पार्थ सारथी, वो सारथी बन जाते हैं, पार्थ के सेवक बन जाते हैं। तो साधारण दर्शन रहेगा तो अर्जुन बड़े हुए, या भगवान देवकी के थ्रू आते हैं तो लगेगा ओ देवकी बड़ी हुई। भगवान जो प्रेम होता है जब, तो भक्त भगवान की सेवा करते हैं, भगवान भी चाहते हैं कि कब चांस मिले अपने भक्तों की सेवा करने का, वो रहते भगवान ही हैं, बट आउट ऑफ लव सम टाइम ही वांट्स टू सर्विस डिवोटीज। जैसे जब वो विष धारण करने की बात आई तो सबसे पहले विष्णु के पास गए, तो भगवान विष्णु बोले आप ये शिव जी के पास जाओ वो करेंगे। तो जैसे एक पिता होता है वो क्या चाहता है, मेरा पुत्र का नाम मुझसे ज्यादा हो, ही वॉन्ट्स लाइक दैट। तो गॉड वॉन्ट्स कि मेरे से आगे मेरा भक्त का नाम हो। पूरी भगवद्गीता में पूरी महाभारत जिताई किसने, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने। लेकिन क्रेडिट किसको मिला, किसको दिया, अर्जुन के थ्रू करवाई। जैसे ही जब लड़ाई खत्म हो गई तो भगवान ने बोला अर्जुन को, अर्जुन पहले तुम उतरो रथ से। तो अर्जुन पहले उतरे और जैसे ही भगवान उतरे वो पूरा रथ विध्वंस हो गया एकदम से आग में, क्योंकि इतने उसके अंदर अस्त्र घुसे थे कि अगर भगवान की वजह से ही वो अभी तक टिका हुआ था तो पूरा युद्ध भगवान ने जिताया। तो भगवान का ये नेचर है, ही वॉन्ट्स टू गिव क्रेडिट टू हिज डिवोटीज। तो इसलिए हम अलग से शास्त्र पढ़ के नहीं समझ पाएंगे कि कौन क्या है, इसलिए हमें आवश्यकता है गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए तरीके से वो रियलिटी जानते हैं, एज इट इज जानते हैं।
और भगवान की जो अविद्या रूपी शक्ति है, मान लो थोड़ा अविद्या का प्रकाश लिया फिर अविद्या रूपी शक्ति माया रूपी जाल में आदमी को घेर लिया, तो ये भी इसकी ही इच्छा है, चाहता तो है मनुष्य की उस तरफ चले,
हाँ,
फिर भी जा नहीं पाता।
हाँ,
जैसे शुरू में रहे काफी उसके कॉन्टेक्ट में,
हाँ,
उसकी इच्छा में, फिर उसके बाद कुछ इस तरह से, ऐसा क्यों है कि आपको फिर लगता है आप थोड़ा दूर हो रहे हैं और इच्छा भी है करने की, फिर भी नहीं कर सकते।
देखिए हम अपनी इच्छा से यहाँ आए हैं, पहली बात तो भगवान ने नहीं हमको जबरदस्ती भेजा, हमने इच्छा की कि हम भगवान आपकी सेवा नहीं करना चाहते। अभी एक बार अपनी इच्छा से आए हैं भौतिक इच्छाएं लेकर के, जब तक हमारी भौतिक इच्छाएं 100% नहीं होंगी दूर, तब तक माया हमको नहीं जाने देगी। माया भगवान की सेविका है, उसका कार्य है कि वो लोग जो भगवान से विद्रोह करके आए हैं उन्हें जब तक वो पूरी तरह शुद्ध नहीं होते तब तक नहीं जाने दें। इसलिए माया टेस्ट करती रहती है, आपके अंदर अगर इच्छा भी है जाने की तो माया आपको प्रलोभन देती है कि अरे क्यों जा रहे हो, वहां क्या रखा है, देखो इतना बढ़िया है ना, आप आए थे, हाँ यार अच्छा है, ओके अभी यही रहो, फिर अभी यू आर नॉट रेडी स्टिल, यू आर नॉट स्टिल फर्म दैट आई कैन नॉट बी हैप्पी हियर। तो इसलिए माया टेस्ट लेती है, माया का एक कार्य है भगवान की सेवा के लिए। लेकिन जब व्यक्ति पूरी तरह से 100% कोई प्रलोभन में नहीं आता है, 100% डिटरमिनेशन ओवर वेरी लॉन्ग पीरियड टाइम, फिर वही माया हेल्प करती है टू गो आउट। तो इस तरीके से तो हमको बने रहना है लॉन्ग टर्म के लिए, डिग रहना है, स्वस्थ धारा की तरह से है, वॉकिंग ऑन रेजर्स एज, यस। लेकिन डिफिकल्ट भी आसान भी है, यदि आप एक सिंपल प्रिंसिपल भगवान की शरणागति को ले लेंगे तो आसान भी है। भगवान का नाम लीजिए, शुद्ध निष्कपट होकर के भगवान की सेवा में आने का प्रयास कीजिए धीरे धीरे, तो आसान भी है, धीरे धीरे संभव हो जाएगा। एनी अदर क्वेश्चन?
भगवान
उनको लेकिन स्टार्टिंग में ये अपने इमोशंस से मिक्स भी हो सकता है, भावुकता से मिक्स हो सकता है, इट इज नॉट प्योर। जो प्योर इमोशंस हैं, जो शुद्ध स्तर पे आते हैं, और जो हमारे एट प्रेजेंट जो इमोशंस आते हैं कभी कभी, वो अभी प्योर नहीं होते हैं, उसमें हमारी भावुकता और कंसेप्शंस मिक्स होते हैं। मिश्रण होता है वो, अभी शुद्ध अवस्था में नहीं है, इट्स मिक्स्ड, सम पोर्शन इज ट्रू, सम पोर्शन इज योर इमोशंस, भावुकता, कुछ पोर्शन तो स्पिरिचुअल है और कुछ पोर्शन इमोशनल है, दोनों का मिक्सचर है। अभी अगर शुद्ध होता तो फिर भौतिक जगत से अनासक्ति जाती पूरी तो फिर कोई आसक्ति नहीं होती इस स्तर पे, तो हम कह सकते हैं शुद्ध था। पर अब हम देखते हैं कि वो दो मिनट के लिए आए और फिर पूरी तरह से हम फिर भोगने की इच्छा फिर दोबारा से आ गई, कैसे, इसका मतलब शुद्ध नहीं है। कई बार हमको लगता है हमको भगवान के दर्शन हो गए, कई लोग बोलते हैं हमको सबने भगवान के दर्शन हो गए, तो अगर भगवान के दर्शन हो गए रियली में तो फिर भौतिक जगत से अनासक्ति होनी चाहिए पूरी, कि आप में वो है, कि आपके अंदर भोग करने की एकमात्र इच्छा भी नहीं रह गई है। यदि रह गई है इसका मतलब जिनको आपका दर्शन हुआ है जिनका भगवान नहीं थे। कई बार इवन घोस्ट्स भगवान का रूप लेकर के आते हैं, यस दिस इज शास्त्र इज वर्डिक्ट समटाइम्स। नहीं तो क्या करते हैं, कोई हम देखते हैं कि माता आती है, ऐसे देखते हैं कोई शराब पीने वाले हैं बिल्कुल थर्ड क्लास बिल्कुल ऑर्डिनरी लोग हैं, हम कहते हैं उनको माता आ गए, भगवान आ गए, तो भगवान का यही काम रखा है भगवान को ऐसे किसी भी ऑर्डिनरी जीव के। सो एक्चुअली दे आर घोस्ट एंटरिंग इन दोज बॉडीज नॉट द, और घोस्ट के अंदर हाई पावर रहती है क्योंकि सटल बॉडी होती है, दे कैन डू सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, पर यह मतलब नहीं कि उसके अंदर देवी दुर्गा जी आ गई हैं जो भगवान आ गए हैं, भगवान ऐसे जो अपवित्र हैं उनके अंदर ऐसे नहीं आते हैं। वो क्लियर नहीं हो पाया ना, मानव सेवा माधव सेवा क्यों नहीं है,
कि है कि नहीं,
है कि नहीं, यस। तो हमने वो जो इनडायरेक्ट प्रोसेस में लिया था, तो यहां पर वो मानव सेवा जो अपने कर्म के फलों को केवल दूसरों को दे देना, यहां इस प्लेटफॉर्म पे मानव सेवा आती है, माधव इनडायरेक्ट प्रोसेस में वो आती है, वो इनडायरेक्ट प्रोसेस डायरेक्ट प्रोसेस में नहीं आती है। तो माधव सेवा करने से क्या होगा, हमारे को धीरे धीरे अनासक्ति होगी, फिर ज्ञान आएगा और फिर ध्यान, और फिर अंत में जाकर के फिर वो भक्ति में ऐड करेंगे, यानी इट्स स्टेज फर्दर डाउन।
तो लास्ट में भक्ति तो आती है,
करनी पड़ेगी, वो तो उसके बिना चारा नहीं है, और इससे डायरेक्टली भक्ति करेंगे ऑटोमेटिकली, इससे लिफ्ट, आजकल कलयुग में क्या सबको लिफ्ट चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, तो इसलिए बेटर है कि हम लोग शॉर्टकट को लें और फटाफट जाएं। और वैसे सेवा की भावना भी देखी जाए, मानव की सेवा करने जा रहे हैं तो पहले समझना पड़ेगा कि मानव कौन है, शरीर या आत्मा। तो एक तो है कि हम उसके शरीर की सेवा करें, और एक है कि हम उसकी सेवा करें यानी आत्मा की सेवा करें। एक आपका फ्रेंड डूब रहा है पानी में, बर्थडे सूट है उसका नया, एक तो है कि आप अरे बर्थडे सूट है, उसको सूट को बचा करके ले आए, ड्रेस को बचा करके, आई हैव सेव्ड इट एटलीस्ट सूट, बट दैट इज नो एक्चुअली गुड। पर अगर आप उसको व्यक्ति को बचाएं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, तो व्यक्ति आत्मा, तो आप आत्मा को भगवत धाम भेजिए ना, दैट इज बेस्ट। या एक और कहानी लें, आपका मित्र है कोई बहुत अंबानी संबड़ी रिचेस्ट बहुत बड़ा, आप उसके देखते हैं एक दिन उसका लड़का जो है सड़क पे घूम रहा है ऐसे ही फटे हाल, क्या हुआ भाई, लड़ाई हो गई घर में, कुछ झगड़ा हो गया, छोड़ के आ गया, फटे हाल घूम रहा है, खाने को नहीं है। आप एक ऑर्डिनरी आदमी है, सर्विस मैन सम ऑर्डिनरी, आप बोलते हैं तुम चिंता मत करो, आई विल सर्व यू, यू कम विद मी, यू स्टे विद मी, आई विल गिव यू फूड एवरीथिंग, आप उसको खाने देने लगते हैं, अपना शेल्टर देते हैं, सब देते हैं। एक दूसरी कंडीशन है कि आप क्या करते हैं, उसको घर लेके जाते हैं, उसके धीरू भाई अंबानी या अभी तो नहीं है वो, जो भी है उनके पास लेके जाते हैं, और फिर उनकी सलाह कराए देते हैं, उसके बच्चे के अंदर से जो भी उसकी मिसकंसेप्शन से दूर करा करके वापस उसको उसके घर छोड़ देते हैं। अभी घर जाने के बाद तो ऑटोमेटिकली जो उसके ठाट हैं वो अपने आप आ जाएंगे। आप कितना दे पाते उसको, आप तो रूखी सूखी देख पाते, अंबानी कितना नहीं दे सकते। तो इसलिए बेस्ट सेवा क्या हुई, उसको अपने घर बुला के रख लेना या उसको वापस उसके घर भेज देना, वो बेटर सेवा है। तो उसी प्रकार से जो भौतिक जगत में मानव सेवा कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, आई विल हेल्प यू, आपके पास है क्या, आप थोड़ा पैसा दे सकते हैं, उसे थोड़ी मदद कर सकते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से तो नहीं निकाल सकते ना, पर यदि आप उसे भगवत धाम भेज देंगे, उसके वापस वास्तविक पिता के पास भेज देंगे जो कि सभी लक्ष्मियों के पति हैं जो उसके वास्तविक पिता हैं, दिस इज द बेस्ट हेल्प। एक उदाहरण है, एक जेल है आपका मित्र उसमें अंदर है, एक तो है डियर फ्रेंड डोंट वरी, हर दिन तुम्हारे लिए फाइव स्टार होटल से खाना लाऊंगा, और मेरा एक ये जेल में जानने वाला है, ये थर्ड क्लास जेल से तुम्हें फर्स्ट क्लास जेल में तुम्हारा ट्रांसफर करवाता हूं, वहां एसी मिलेगा सब मिलेगा, एक तो ये है, और एक दूसरा फ्रेंड है जो उसको छुड़ाने का प्रयास करता है और उसको छुड़ा देता है, बार वो खाने को अरेंजमेंट नहीं करता लेकिन छुड़ा देता है, तो हु इज बेटर, जो छुड़ा देता है वो बेटर है। तो इसी प्रकार से यदि हम ये कहें जो लोग हैं यही बने रहे भौतिक जगत में ही, हम उनकी मदद करते रहे, दैट इज वी आर ट्राइंग कि वो इसी भौतिक जगत में इसी जेल में रहे। पर ये जो है ज्ञान देना, ये प्रोसेस है, यहां से निकलो बाहर। एक और कहानी है, दो बच्चे थे दो भाई, बड़े भाई को टाइफाइड हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया सॉलिड फूड मना, माँ ने देना बंद कर दिया, और बच्चा रोता था लेकिन माँ नहीं देती थी। तो छोटे भाई को एक दिन माँ बाहर गई थी, छोटे भाई को दया आ गई, बड़े भाई ने बोला कि मेरे को माँ देती नहीं है, तो मेरे को ला दो, वो कहीं रखा होगा ले आओ। तो छोटे भाई ने सोचा कि आज मैं दया करूंगा, आज उसकी सब दया पूरी जागृत हो गई। तो उसने क्या किया, वो सब खाना ला करके भाई को दे दिया, बड़े भाई को, बड़े भाई ने खाया और मर गया। तो उसकी इंटेंशन थी मदद करने की, क्योंकि उसको नहीं पता था कि वास्तविक मदद क्या है, सो एक्चुअली उसने इंटर्न उसका नुकसान कर दिया। ऐसे हम जो भी तथाकथित रूप से मदद करना चाह रहे हैं, एक्चुअली हम जानते नहीं कि रियल मदद क्या है। रियल मदद है सबको उनके धाम पहुंचाना, भगवान के साथ उनको मिलाना। हम क्या उनको इसी जगल में जेल में रहने का दे रहे हैं, यहीं उनका नुकसान कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, कोई मदद करनी है किसी की, आपको ये सड़क पर पड़ा है गिरा है उसको दीजिए, पर साथ साथ उसको यही बताइए कि भाई देखो ये समस्या आ जाएगी तुम्हारे कर्म के सिद्धांत की वजह से, कल दोबारा आएगी, मैं आज तुम्हें दवाई दे रहा हूँ, आज खाने को दे रहा हूँ, पर कल दोबारा से आएगी, इसलिए भगवान का भजन शुरू करो। जैसे इंग्लिश में सेइंग है, इफ आई गिव फिश ही विल ईट टुडे, बट इफ आई टीच हिम हाउ टू फिश ही कैन ईट एवरी डे। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए मानस।
आपका कुछ बताइए।
हाँ जी,
तो वो क्यों मतलब?
हाँ, वो भी
मतलब क्या कहना चाहते हैं
वो? या तो भगवान श्री राम जब अयोध्या लंका पे जाने वहां पर, तो शिव उनकी उपासना की। शिव जी जो है भगवान राम के अनन्य भक्त हैं, संकर्षण वो हमेशा उनका जप करते हैं, अनन्य भक्त हैं श्री राम के। भगवान है मर्यादा पुरुषोत्तम, यहां मर्यादा सिखाने के लिए एज ए ह्यूमन बीइंग भगवान आते हैं। एक राजा को, एक नागरिक को कैसा होना चाहिए, इस समय उनका फंक्शन ये है। इस समय वो सिखा रहे हैं कि हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए कोई भी देवी देवता है उनके प्रति। हालांकि हम ये कह रहे हैं कि पूजा केवल भगवान कृष्ण की होनी चाहिए, लेकिन यदि हम कहीं जा रहे हैं और हमें कहीं देवी देवता का एक मंदिर है, इट्स अवर ड्यूटी कि हम लोग जाएं और उनको प्रणाम करें। वी शुड शो ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल द डेमीगॉड्स बिकॉज दे आर वेरी हाई पर्सनैलिटीज, नो डाउट। इसलिए हम जब ये कह रहे हैं कि केवल कृष्ण की पूजा करो, इसका मतलब ये नहीं कि वी आर डिसरिस्पेक्टिंग देम, हम उनका तिरस्कार करने की भावना से नहीं कह रहे। सम्मान तो उनको देना ही चाहिए, सम्मान तो हमें एक साधारण व्यक्ति को भी देना चाहिए, तो वो तो महान पर्सनैलिटी तो है निश्चित रूप से, सो वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू देम। लेकिन जो पूजा उपासना है, जो भक्ति है, भक्ति जो होती है वो भगवान की होती है। ये इस तरह से है। तो भगवान सिखाने के लिए आते हैं कि यस व्हेन यू आर पासिंग देयर लॉर्ड शिवास टेंपल, और भगवान जैसे मैंने बताया कि अपने भक्तों को पूजते हैं, उस दृष्टि से ही भगवान उनको करते हैं, उनकी सेवा करते हैं भगवान।
हम लोग हर जगह जैसे कोई भी काम करते हैं, श्री कृष्ण का
गणेश जी का नाम आया, विघ्न विनाशक,
भागवत में कहीं पे गणेश जी का उल्लेख है?
या भागवतम में सभी का अवतारों का उल्लेख है, गणेश जी का भी है, ब्रह्म संहिता में भी है गणेश जी का, वो विघ्न विनाशक की शक्ति उनकी है।
भागवत में है क्या नहीं कहीं पे?
एग्जैक्टली भागवतम में तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन अन्य जगह पर भागवतम में आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि गणेश, मेरे को रेफर करना पड़ेगा एग्जैक्टली कहाँ है कि नहीं है एग्जैक्टली भागवतम के अंदर है सच। बाकी अन्य जगह तो ब्रह्म संहिता में तो स्पष्ट है कि वो विघ्न विनाशक शक्ति उनकी है।
तो ये मतलब मैं कोशिश करूंगा,
ओके आई विल ऑल्सो ट्राई एंड टेल,
आपको कहीं मिले तो
यस
देखना है। अभी तक मुझे उसमें जी का उल्लेख नहीं मिला किसी।
हाँ
या
एक्चुअली जो भागवतम है स्पेशली, भागवतम वो शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पर है पूरी।
दूसरा जो आपने पहले शुरू में कहा था रस की चीज बताई, तो आपने केवल पांच ही रस के बारे में उल्लेख किया है।
हाँ जी,
हम लोग किताबों में करीब 9 रस के बारे में पढ़ते
हैं। हाँ, एक्चुअली ये प्राइमरी रस है, इसके टोटल 12 रस होते हैं,
तो मतलब 9 से भी ज्यादा होता
है। हाँ जी, वो कहते हैं सेकेंडरी रस, ये प्राइमरी है, प्राइमरी मेलोज एंड सेकेंडरी मेलोज। सेकेंडरी मेलोज में आते हैं,
लोगों को प्राइमरी 9 बताए मतलब जब
ना
स्कूल कॉलेज में जब भी पढ़ते थे,
तो फिर 9 के अंदर और कौन से आपको याद है 5 के अलावा?
जैसे आपने कौन कौन से बताए थे? एक तो
शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य।
तो इसमें ये जो दास वाला तो नहीं पढ़ाया था, मतलब हम लोगों को जैसे हम लोग शुरू करते थे जो माधुर्य आपने कह दिया तो श्रृंगार रस हो गया,
श्रृंगार रस।
और फिर उसके बाद जो है जैसे
क्योंकि प्राइमरी जो है वो हमेशा से मेन है, वो सेंटर पॉइंट, उनके साथ साथ कभी कभी ये ऐड हो जाते हैं। जैसे माधुर्य रस है किसी का, वो रहता है उसके साथ साथ, उसी के अंदर कभी कभी रुद्र रोष आ जाता है उसमें, कभी कभी गोपियां क्रोधित हो जाती हैं।
माधुर्य से रौद्र को नहीं बताया, रौद्र तो अलग ही था
ना, मतलब एक्चुअली क्या है आप उसमें
केवल इसी के दो पार्ट करके श्रृंगार और वियोग कर दिया।
नहीं, श्रृंगार और वियोग,
वियोग
वो है संभोग वियोग जो आप बात कर रहे हैं, वो श्रृंगार के दो भाग हैं, संभोग और वियोग।
नहीं, श्रृंगार और वियोग, श्रृंगार मतलब लव अफेक्शन हो गया।
हाँ,
वियोग मतलब डिटैचमेंट हो
गया। या वो संभोग और विप्रलप्सा, विप्रलंबा उसको बोलते हैं शास्त्र की दृष्टि में, विप्रलप्सा सेपरेशन एंड यूनियन, ये दोनों मिलाकर के माधुर्य, ये दोनों मिलाकर के माधुर्य है। जो ये इसमें जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक में टाइम टू टाइम ये सेकेंडरी कैरेक्टर ऐड होते हैं उसको बढ़ाने के लिए, उस रस को बढ़ाने के लिए। जैसे कभी कभी गोपियां वो रुष्ट जाती हैं भगवान से, कभी कभी क्रोधित जाती हैं उनके ऊपर, ये सब सेकेंडरी हैं, ये हमेशा प्रेजेंट नहीं रहते हैं, ये प्राइमरी के साथ में ऐड होते हैं टाइम टू टाइम भगवान की प्रसन्नता के लिए, इसलिए सेकेंडरी में आते हैं। इसका पूरा विवरण हमारी पुस्तक है भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें बहुत डिटेल में डिस्कशन है सबका पूरा कंप्लीट, अगर आप आगे जाना चाहें इस बारे में, सभी 12 सभी का पूरा डिटेल में वर्णन वहाँ पर आपको मिलेगा।